इस थ्योरी के हिसाब से यू आर वेरी सर्टेन कि ये अवध और पूर्वांचल के एरिया का इनका होमलैंड रहा होगा।
हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न यूपी जो था वो कोर था और वहीं पे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये प्रयाग या तो कोसाम्बी,
अच्छा,
जो प्रयाग के बगल, प्रयागराज के बगल में ही है, वो जो थी वो कैपिटल थी। जाति वाले एस्पेक्ट पे डिबेट बहुत चलती है, क्योंकि देखिए जो श्रीगुप्त नाम है ना उसमें, जैसे आप स्कॉलर्स को पढ़ेंगे तो बेसिकली तीन व्यूज हैं। जो अर्ली ब्राह्मण रूलर्स थे उनमें ये एस्पेक्ट बहुत मतलब कॉमन है कि वो अपनी जो वर्ण आइडेंटिटी थी वो अपनी इंस्क्रिप्शंस में लिखते थे। समुद्रगुप्त अपने इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं लिच्छवी दौहित्र, दौहित्र संस्कृत में कहते हैं बेसिकली नाती को। अब स्कॉलर्स का कहना है कि इस पीरियड में बेसिकली जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का सेशन इतना सिंपल नहीं हुआ था, यहाँ पे सिविल वॉर लड़ी गई थी। कुमारगुप्त जो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आए उनके बारे में भी लगभग क्लियर है, और फिर स्कंदगुप्त के पीरियड में तो हम 100% जानते हैं कि वो हुई थी। मतलब जो एक परसेप्शन है कि गुप्त का बड़े प्यार प्यार से राजा बन रहे थे, तो वो इतना आसान नहीं है। समुद्रगुप्त एक तरह से आप कह सकते हैं कि इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ एंशियंट इंडिया और दी ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। और जैसे कि ये आपने पहले देखा कि मौर्यों का भी ये कोर था, और उसमें एक पर्सपेक्टिव ये मतलब मेरे हिसाब से बहुत ऑब्वियस है कि गुप्त जो रूलर्स थे स्पेशली समुद्रगुप्त को ना मौर्यों के बारे में पता था, लेकिन एंड में ये होता है कि चंद्रगुप्त सेकंड अपने बड़े भाई को मार देता है और अपनी जो भाभी है उससे शादी करके देवी चंद्रगुप्त से फिर राजा बन जाते हैं। समुद्रगुप्त लिखते हैं अपने उसमें कि मैंने शकों को भी जो है वो कॉन्कर करा, लेकिन कॉन्कर वॉन्कर कुछ नहीं करा। प्रभावती गुप्ता वकाटक की क्वीन है, रेजेंट है, लेकिन जो पहले की 7 लाइन है उसमें वो जीनियोलॉजी बता रही है गुप्त साम्राज्य। और दूसरी उससे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, अपने पति के लिए वो टाइटल इस्तेमाल करती है महाराज, अपने पिताजी चंद्रगुप्त सेकंड के लिए इस्तेमाल करती है महाराजा धीराज।
हेलो जय, कैसे हो भाई, वेलकम बैक।
बढ़िया
यार, तुम्हारा जो नया यूट्यूब चैनल बनाया है तुमने हिंदी वाला, काफी बढ़िया काम कर रहे हो, उसका थोड़ा बता दो अपना जो क्या नाम क्या है यूट्यूब चैनल का।
द स्टोरी ऑफ इंडिया नाम है
हिंदी वाले का।
हाँ, द स्टोरी ऑफ इंडिया है।
ठीक है, तो दो अब चैनल हो गए, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। सही है, तो हमारे 4 एपिसोड हो चुके हैं इस पूरी सीरीज में जो हम कर रहे हैं, और अब हम पहुंच गए हैं गुप्तास पे, द गोल्डन पीरियड जो बोला जाता है। कई लोग उस पे एग्री नहीं करते, जो आपने बताया अभी कि कुछ डिबेट है उस पे, तो हम चर्चा करेंगे कि ये गोल्डन पीरियड था या नहीं था, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं फॉर एंड अगेंस्ट। बट लेट्स स्टार्ट कि जब इनका गुप्ता एम्पायर जब शुरू होता है उससे पहले हमने पिछली बार बात की थी कुषाण पीरियड की, तो उसके बाद क्या एनवायरनमेंट है जब ऑन द अराइवल ऑफ द सीन ऑफ गुप्तास, क्या माहौल है, पॉलिटिकल सीन क्या है नॉर्थ इंडिया में।
जैसे बेसिकली अराउंड 250 एडी पहले, जैसे आपका लगभग बिहार तक का जो रीजन था कुषाण के अंडर था, लेकिन अब क्या है कि जो कुषाण है एक स्मॉल पावर वेस्टर्न पंजाब के अराउंड है, और यहाँ पे वैक्यूम सा हो रखा है पूरा का पूरा, तो इस वैक्यूम को ना बहुत जो स्मॉलर पावर्स हैं वो फिल कर रही हैं। तो जैसे आपका मथुरा और नीचे झांसी वासी के इलाके में नाग पावर्स डोमिनेट हो रही हैं, फिर उसके बाद जो मालवा का रीजन है वहाँ पे एक पावर आ रही है उसका नाम है वकाटक।
अच्छा,
और फिर आप जैसे क्या कहते हैं इधर ईस्टर्न यूपी में चले जाएंगे तो वहाँ पे मग करके एक किंगडम है। तो ऐसे छोटी छोटी किंगडम्स जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, और इसी टाइम पे हम देखते हैं कि जो गुप्त एम्पायर है, एम्पायर अभी तो क्या एक छोटी सी किंगडम थी, उसका राइज होता है। ये जो अर्ली गुप्ता रूलर्स थे बेसिकली यही 280-300 एडी के अराउंड इनका एमर्जेंस हुआ था।
तो वो कौन थे
दो जो ये जो अर्ली गुप्ता रूलर्स हैं, बेसिकली दो रूलर हैं, श्रीगुप्त जिनको कभी कभी महाराज गुप्त भी बोला गया है, और घटोत्कच गुप्त।
अच्छा,
तो इनके बारे में ना इनके कॉइन्स मिलते हैं हमको, ना इनके इंस्क्रिप्शंस मिलती है। हम इनके बारे में जानते इसलिए हैं क्योंकि जो बाद के गुप्त राजा आए थे
उन्होंने लिखा,
हाँ उन्होंने अपनी जीनियोलॉजी में लिखा कि भाई हम श्रीगुप्त पहले थे दूसरे थे। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि हिस्टोरियंस को पहले ये समझना पड़ेगा कि जो ये श्रीगुप्त और महाराज गुप्त थे इनकी टेरिटरी कौन सी थी।
हाँ, इनका मतलब बेसिकली वेयर डिड दिस स्टार्ट फ्रॉम, इनका होमलैंड क्या है।
हाँ,
क्योंकि कई सारी थ्योरीज हैं, कोई बिहार में बताता है, कोई बंगाल में, कोई कहीं पे, तो क्या मतलब थ्योरीज है और उनका क्या रीजन है वो सब थ्योरीज देने का, सोर्सेज क्या हैं।
तो इसमें जैसे बेसिकली तीन थ्योरी, जैसे आपने कहा कि एक तो है ईस्टर्न यूपी की, फिर मगध और फिर वेस्टर्न बंगाल। अब इसमें क्या है कि अब जैसे आप सोर्सेज,
ईस्टर्न यूपी में कहाँ है?
ईस्टर्न यूपी बेसिकली आपका अवध और जो आज का पूर्वांचल रीजन है।
अच्छा,
तो उसमें अब आप यदि देखेंगे सबसे पहले कॉइनेज, कॉइन की जो होड, जो कॉइन के बड़े बड़े ढेर मिलते हैं पुराने सिक्कों के, तो उसमें हम देखते हैं कि कुल मिला के 14 ऐसे ढेर मिले हैं अर्ली गुप्ता रूलर्स के, और 14 में से 8 जो हैं वो तो पूरे के पूरे मिले हैं आप, सॉरी 14 जो ढेर हैं वो ईस्टर्न यूपी में मिले हैं केवल।
अच्छा,
और जो ये 14 ढेर है इसमें जो जो तीसरा गुप्ता रूलर है चंद्रगुप्त फर्स्ट, क्योंकि जैसे हमने बताया कि श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त के बारे में कुछ हमारे पास था नहीं, ना मटेरियल है ना इंस्क्रिप्शन है ना कॉइन्स है, तो 14 ढेर हमको मिले हैं ईस्टर्न यूपी में, 2 मिले हैं मगध में और 2 मिले हैं बंगाल में।
तो जो तुमने थ्योरी बताई थी पिछली बार, हाँ, जैसे हम योद्धे की बात कर रहे थे, हाँ, कि रोहतक में सबसे ज्यादा मिले हैं,
हाँ,
तो वो कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा,
हाँ,
तो इसमें भी ये थ्योरी लगनी चाहिए फिर तो।
हाँ, और दूसरी बात ये भी है ना कि जैसे जो अर्ली गुप्ता, जैसे आप मगध के जो 2 ढेर मिले हैं उसमें एक सिक्का समुद्रगुप्त का है, सॉरी एक चंद्रगुप्त का है और 4 ऐसे समुद्रगुप्त के, बाकी सारे के सारे चंद्रगुप्त सेकंड के बाद के, मतलब समुद्रगुप्त के बाद जो राजा है उनके हैं, और वैसे ही बंगाल का हिसाब है कि अर्ली गुप्ता रूलर्स के हैं। अब और हमको क्या कहते हैं कि जो जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट और समुद्रगुप्त के सिक्के बंगाल में नहीं मिलते।
अच्छा,
फिर उसके बाद आप इंस्क्रिप्शंस की बात करोगे तो इंस्क्रिप्शंस में भी वैसा ही है, कुल मिला के 15 इंस्क्रिप्शंस हैं स्टार्टिंग के 150 साल के गुप्त साम्राज्य के, और उन 15 इंस्क्रिप्शंस में से जो आपकी लगभग 8 है, 8 ईस्टर्न यूपी में आती हैं, 2 जो हैं वो बिहार में, और जो 2 बिहार से आती है ना उसमें भी स्कॉलर्स कहते हैं कि फर्जी इंस्क्रिप्शन है, मतलब किसी ने कॉपी बना के बाद में कर दी होगी। और एक इंस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे तो वो अयोध्या की बात कर रहा है, बिहार की बात कर ही नहीं रहा।
तो और मतलब आपका,
और 5 जो है बंगाल में है, लेकिन बंगाल की आप 5 इंस्क्रिप्शंस देखोगे ना तो वहां पे वो सेल और परचेज लैंड की जो है कॉपर प्लेट ग्रांड वो टाइप की है, लेकिन जो आपकी ये 8 इंस्क्रिप्शन यूपी में मिली है ना वो राजाओं से रॉयल इंस्क्रिप्शंस है।
अच्छा, तो जो अर्लीस्ट जो दिखाती है,
हाँ,
वो और मैक्सिमम नंबर्स में भी,
हाँ,
इस थ्योरी के हिसाब से यू आर वेरी सर्टेन कि ये अवध और पूर्वांचल के एरिया का इनका,
हाँ,
होमलैंड रहा होगा।
हाँ, और इस ये जो रीजन था जैसे कि पहले मगध यहाँ पे रूल करते थे उनको रिप्लेस करके ये श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त ने अपना वो बनाया। दूसरा क्या है कि जैसे जो अर्ली जो जितनी भी इंस्क्रिप्शंस मिलती है ना गुप्तों की हमको, तो उसमें इंटरेस्टिंगली बात क्या कर रखी है इन्होंने गुप्त राजाओं ने कि जब श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त की बात आती है तो उसमें वो टाइटल इस्तेमाल करते हैं इनका महाराज, और चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहते हैं महाराजाधिराज। तो उससे कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये जो श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त ना पेटी रूलर्स थे या फ्यूडेटरी होंगे, कोई एक मतलब बड़े लेवल का या इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे, इसीलिए इनको महाराज बोला गया, महाराजाधिराज नहीं बोला गया। लेकिन जो तीसरा रूलर है चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बारे में हम जानते हैं कि उसको और क्योंकि उनके हमारे पास सिक्के भी हैं और फिर जो हमारे पास कॉइन्स भी हैं उनके और इंस्क्रिप्शंस जो लेटर गुप्ता रूलर्स के इंस्क्रिप्शन है उसमें उनको महाराज धीराज बोला गया है।
और कैपिटल क्या था इनका?
कैपिटल में देखिए डिबेट है, अब जनरली तो सर लोग समझते हैं पाटलिपुत्र थी, लेकिन पाटलिपुत्र में गुप्त इंस्क्रिप्शंस नहीं मिली हैं। फिर दूसरा क्या है कि जैसे
जो आप कह रहे हो जो लेटर पीरियड में भी जो मिली है,
हाँ,
जैसे हमने कहा स्कंद गुप्त के बाद वाले रूलर्स हैं उनका भी वहीं पे मिला है,
हाँ,
ईस्ट यूपी में,
हाँ,
तो लॉजिकली तो उसी तरफ ग्रेविटेट कर रहा है ना।
नहीं, स्कंद गुप्त के बाद तो ईस्टर्न शिफ्ट होता है, जैसे अच्छा, समुद्रगुप्त और बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड तक ना, हाँ, हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न यूपी जो था वो कोर था और वहीं पे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये प्रयाग या तो कोसाम्बी,
अच्छा,
जो प्रयाग के बगल, प्रयागराज के बगल में ही है, वो जो थी वो कैपिटल थी। क्योंकि उसका एक मेरे मेजर कारण ये है ना कि जैसे जो सबसे फेमस जो गुप्ता इंस्क्रिप्शन है वो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है।
अच्छा,
अब इंटरेस्टिंगली वो प्रशस्ति क्या है ना, वो एक अशोकन पिलर है, उस पर समुद्रगुप्त ने लिखवा रखा है, और वो मतलब एक आप इंटरेस्टिंग फैक्ट कहो कि उस पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में, कि उसमें चार अलग अलग पीरियड्स के राजाओं के बारे में, पहला तो अशोकन इडिक्ट है तो अशोक ने कुछ लिख रखा है, फिर समुद्रगुप्त ने उसी पिलर पे लिखा, फिर उसके बाद सबसे एंड में जहांगीर ने लिख रखा है, और बीच में बीरबल ने 1575 में लिख रखा है, और इंटरेस्टिंगली वो नागरी स्क्रिप्ट में लिखता है, जहांगीर लिखता है परिजन में। अच्छा। नागरी स्क्रिप्ट में बीरबल लिखता है कि वो ऑफरिंग देने आया है पिलग्रिमेज पे तीर्थराज प्रयाग में, और वो इंटरेस्टिंगली पीरियड इसलिए है क्योंकि 1573 में जो इलाहाबाद का किला है वो अकबर ने बना दिया था।
हाँ एग्जैक्टली।
तो वहां पे वो जाता है और इस समय तक उसने नाम इस्तेमाल करा है तीर्थराज प्रयाग।
इंटरेस्टिंग। तो ये तो इनके होमलैंड की बात हो गई, कैपिटल की बात हो गई। जो अर्ली पीरियड में भी जो एविडेंस पॉइंट आउट कर रहा है वो ईस्ट यूपी का कर रहा है, और ये बंगाल वाली थ्योरी और ये बिहार वाली थ्योरी तो बिल्कुल ही एविडेंस के हिसाब से सही नहीं दिखती है। तो ये हो गया। अच्छा, अब रीजन पता चल गया हमको, इनके अर्ली रूलर्स पता चल गए, उस टाइम पे कौन कहाँ राज कर रहा था वो पता चल गया। अब चंद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे, जो सबसे मेन, मतलब सीरीज ऑफ रूलर्स, मेन रूलर्स में से फर्स्ट चंद्रगुप्त वन। तो इनका आने से पहले, इसके बारे में जाने से पहले, ये जो एक क्वेश्चन आता है कि इनकी जाति क्या थी।
जाति वाले एस्पेक्ट पे डिबेट बहुत चलती है, क्योंकि देखिए जो श्रीगुप्त नाम है ना, उसमें जैसे आप स्कॉलर्स को पढ़ेंगे तो बेसिकली तीन व्यूज हैं। कुछ का कहना है कि जो गुप्त थे वो वैश्य थे, वर्ण इस समय इस्तेमाल बात हो रही है, और कुछ का कहना है कि ब्राह्मण थे, कुछ का कहना था क्षत्रिय थे।
सारे बेस कवर हो गए,
शूद्र बच गया है। तो जो बेसिकली मोस्ट स्कॉलर्स दो डोमिनेंट व्यू हैं, या तो ब्राह्मण थे या तो क्षत्रिय थे।
और उनके कारण क्या हैं कि वो इस तरीके से बोलते हैं?
ब्राह्मण कहने का कारण ये है कि चंद्रगुप्त सेकंड, जो समुद्रगुप्त के बाद आए थे, या चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो पोते थे, उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी वकाटकों से करवाई थी। वकाटक थे ब्राह्मण,
ये पक्का पता है।
हाँ, क्योंकि वकाटक राजा जो हैं अपने आप को द्विज बोलते हैं। अच्छा। अब द्विज जो है वो ट्वाइस बॉर्न, बेसिकली उसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों इंक्लूड होते हैं। लेकिन जनरली क्या देखा गया है कि जो अर्ली इंस्क्रिप्शंस है ना एंशियंट इंडिया की, द्विज टाइटल मोस्ट ऑफ द टाइम ब्राह्मणों के लिए यूज होता है इंस्क्रिप्शंस में खासकर। अच्छा। और उनका जो गोत्र भी है ना, उन्होंने जो बताया है हमको, वो भी ब्राह्मणों का गोत्र आजकल पाया जाता है।
कौन सा?
धारण तो गुप्त का था, और जो वकाटकों का मेरे को याद नहीं आ रहा इस समय, मेरे को भी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। धारण और एक ध्यान से उतर गया मेरे,
कोई नहीं चलो।
तो बेसिकली अब इसकी वजह से क्या है कि इस पीरियड में दो व्यूज हैं। अब यही वाला जो पर्टिकुलर फैक्ट है ना इसको, कि गुप्तों ने वकाटकों से शादी करी थी, तो स्कॉलर इसी पर्टिकुलर फैक्ट को दोनों व्यूज के लिए यूज़ करते
हैं। लेकिन ऐसा हुआ है ना, मतलब कि उस समय भी ये प्रचलन में तो था कि बेशक अगर जाति अलग अलग है, लेकिन राजा महाराजा हैं, तो शादियां होती थी।
तो इसीलिए तो मैं, जैसे कि जो स्कॉलर्स हैं, ये पर्टिकुलर फैक्ट है कि भाई शादी करी है चंद्रगुप्त सेकेंड ने इस क्या कहते हैं प्रभावती गुप्ता की वकाटकों में। तो कुछ स्कॉलर जो ब्राह्मणों कहते हैं कि गुप्ता ब्राह्मण थे, उनका कहना है कि भाई देखिए सेम वर्ड में शादी हुई है इसीलिए गुप्त ब्राह्मण थे। लेकिन जो क्षत्रिय कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो इस पीरियड, ये पीरियड था ना, तो इस पीरियड में बेसिकली अगर जो लड़का है जिसकी शादी हो रही है वो अगर हायर वर्ण का है तो लोअर वर्ण की लड़की से शादी कर सकता है, वो अलाउड था।
अच्छा।
तो वर्ण हायरार्की में ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय आते हैं। हाँ। तो क्षत्रिय लड़की वकाटक जो कि ब्राह्मण है उनसे शादी हो रही है तो ये भी अलाउड है। तो एक ही फैक्ट है।
नहीं नहीं नहीं, मतलब अगर लड़का क्षत्रिय है,
नहीं लड़का तो वकाटक थे।
ओ, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है,
वकाटक ब्राह्मण थे, प्रभावती की शादी। हाँ, तो वो भी अलाउड वो है।
ठीक ठीक।
तो उसमें क्या है कि अब ये
एक हमारे पिछले एपिसोड
सबसे फर्स्ट आएगा
उसको, ये कंफ्यूजन था
मेरे हिसाब से। जैसे मेरा पर्सनल व्यू है कि क्योंकि एक चीज इंटरेस्टिंग, जैसे आप जब भी इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे ना, तो वकाटकों की आप बात करें तो वकाटक अपना जो द्विज टाइटल है वो बड़े प्राउडली वो करते हैं कि ब्राह्मण वो। फिर उसके बाद आप सातवाहनों को देखोगे, सातवाहन हमने पिछले में डिस्कस करा था, तो सातवाहन अपने आप को कहते हैं एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणा कहते हैं, मतलब वो प्राकृत में है तो, और अपने आप को कहते हैं क्षत्रिय दाप मन्मदा, मतलब उनकी इंस्क्रिप्शन में आता है कि क्षत्रियों की जो जो हॉटीनेस है ना उनको कंट्रोल करने वाले हम थे। तो जितनी भी जो अर्ली ब्राह्मण रूलर्स थे उनमें ये एस्पेक्ट बहुत मतलब कॉमन है कि वो अपनी जो वर्ण आइडेंटिटी थी वो अपनी इंस्क्रिप्शंस में लिखते थे। तो मेरे हिसाब से अब गुप्त इतना मतलब इन्होंने रूल करा लेकिन कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं करा अपनी आइडेंटिटी। तो मेरे हिसाब से क्योंकि एक जर्नल बिलीव था कि जो क्षत्रिय थे वो रूल करेंगे, तो उनको था कि भाई नीड ही नहीं है हमको, हम क्यों करें फिर जो, तो मेरे हिसाब से वो है। लेकिन ये वाला अभी भी मतलब जैसे बहुत डिबेट है इस पे, तो अभी भी आप कह सकते हो, लेकिन ब्रॉडली मेरे हिसाब से दो ही होंगे, या तो ब्राह्मण होंगे या क्षत्रिय होंगे, दोनों में से कोई एक।
ठीक है तो ये
अच्छा, दूसरी बात एक और चीज़ है कि जो क्षत्रिय वाले जो कहते हैं और ब्राह्मण वाले कहते हैं, उसमें अभी इन्होंने लिच्छवी से शादी करी थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवियों की बेटी कुमार देवी से शादी करी थी। अब लिच्छवी क्षत्रिय थे ये तो 100% कन्फर्म है। तो इसमें भी देखिए वो क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि क्षत्रिय क्षत्रिय शादी कर सकते हैं, चंद्रगुप्त क्योंकि क्षत्रिय था, अगर ये तो मतलब जो क्षत्रिय वर्ण को सपोर्ट करते हैं थ्योरी, उनका कहना है कि देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था वो क्षत्रिय था और लिच्छवी जो थे वो क्षत्रिय थे, तो दोनों में शादी होगी। वहीं पे अगर गुप्त को अगर आप ब्राह्मण कह रहे हो तब भी वो क्षत्रियों में शादी कर सकते थे, क्योंकि चंद्रगुप्त ब्राह्मण है, लिच्छवी जो उनकी जो रानी से शादी हो रही है वो एक क्षत्रिय है। तो यहाँ पे भी वर्ण हायरार्की में ब्राह्मण जो है, तो एक ही फैक्ट को दोनों यूज कर रहे हैं आसानी से,
वो तो आप कन्वीनियंस के हिसाब से कर ही लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये सब जो बेसिक मतलब जो थ्योरीज हैं इनके ओरिजिन्स के बारे में वो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो चंद्रगुप्त वन है उनके बारे में जो हम स्कूल में भी पढ़ते थे वो यही मतलब जो फैक्ट याद रहा कि उन्होंने भाई लिच्छवी प्रिंसेस जो है उनसे शादी की थी।
हाँ
बट इनके बारे में थोड़ा बताइए कि इनकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है। पहले ऐसे राजा हैं जिनका, जैसे आपने बताया कि पहले श्रीगुप्त और उनका तो घटोत्कच का तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन ये ऐसे पहले हैं जो अब सो टू से कि अपना मार्क बनाते हैं, तो वहाँ से बता इनसे शुरू कर लेते हैं।
एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताना भूल गया, घटोत्कच के स्पेशली कंसर्न में एच सी राय चौधरी ने बहुत फेमस बुक लिखी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम द एसेशन ऑफ परीक्षित टू द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये कहते हैं कि घटोत्कच के बारे में, घटोत्कच क्योंकि एक महाभारत के भी कैरेक्टर हैं ये भीम के बेटे, तो उसमें जो घटोत्कच का नेगेटिव एस्पेक्ट था ना, तो जो फाइनल रिडेक्शन महाभारत की गुप्त पीरियड में कंपाइल हुई, तो उसमें जो नेगेटिव एस्पेक्ट थे घटोत्कच को लेकर उसको कम कर दिया गया, क्योंकि जो गुप्त राजाओं की सेंसिबिलिटी की, भाई उनका जो पूर्वज था उसका भी सेम नाम था।
अच्छा
हाँ, तो ये मतलब वो अब एक स्पेकुलेशन देते हैं।
ओके
तो वो बड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगता
है। बट जो अभी जो हमारे पास अवेलेबल वर्जन्स हैं महाभारत के, उसमें वो नहीं है क्या उतना नेगेटिव?
हाँ उतना नेगेटिव नहीं है। तो जो फाइनल
वर्चुअस दिखाया गया है कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया,
उसमें जो घटोत्कच के सिन वगैरह हैं उनको थोड़ा दबा दिया गया है। तो एच सी राय चौधरी के हिसाब से ये जो गुप्त रूलर्स की सेंसिबिलिटीज को देखते हुए।
बट इसका कुछ भी प्रूफ है कि वहां पे उस समय कोई ना कोई चेंज आया है या ये जस्ट थ्योरी?
क्या चेंज आया?
मतलब घटोत्कच का जो पहले अकाउंट था
हाँ,
और जो उसके बाद हुआ गुप्ता पीरियड के बाद
वहां नहीं, उसमें कुछ... वो है ना क्या कहते हैं, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो
कंपाइल
किया गया है, मतलब जो
तो उन्होंने पहले वाले जो वर्जन्स हैं डेटेड बिफोर गुप्ता।
वर्जन्स तो डेटेड है नहीं, अलग अलग वर्जन्स हैं महाभारत के, तो कुछ वर्जन्स में
काफी नेगेटिव है।
हाँ थोड़ा नेगेटिव ज्यादा दिखा रखा है जो हमारे पास अभी आया है।
ओके
तो उस हिसाब से उनका ये कहना है। तो एच सी राय चौधरी का ये व्यू है। अब जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात आई, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी करी। अब ये शादी होती क्यों है, इसके लिए पहले समझने के लिए ना वो पॉलिटिकल मैप हमको देखना पड़ेगा कि जैसे जो ये नाग थे जो कि सेंट्रल इंडिया में थे और वकाटक थे, तो ये क्या होता है कि नागों की एक प्रिंसेस की शादी होती है वकाटका प्रिंस से, और दोनों की टेरिटरी एक तरह से कंबाइंड जॉइंटली रूल हो जाओ करने लगते हैं। और फिर इसका इसके रिस्पांस में, क्योंकि एक सेंट्रल इंडिया में एक पावर ब्लॉक खड़ा हो गया है, हम देखते हैं कि जो योद्धे हैं वो भी अपनी एक मतलब एक अलायंस ऑफ सॉर्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि इंस्क्रिप्शन से लगता है हमको कि भाई इस समय कुछ एक अलायंस बनाने की कोशिश चल रही थी आपस में रिपब्लिक्स का. तो अब क्या है कि आपको नॉर्थ इंडिया में एक पावर ब्लॉक खड़ा हो रहा है, सेंट्रल इंडिया में खड़ा हो चुका है. तो यहाँ पे क्या था कि ये जो अर्ली गुप्ता रूलर्स हैं जो ईस्टर्न इंडिया में रूल कर रहे हैं, और जो व्रिज्जी या लिच्छवीज जो हैं जो अभी बिहार, ये बिहार में है, उनके पास ऑप्शन था या तो भैया वो ऐसे कैसे पड़े रहे, तो उसमें क्या होगा कि सेंट्रल इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया में जो पावर उभर के निकलेगी वो इनको हरा देगी, या तो तुम जॉइंट हाथ जोड़ लो. तो इन्होंने वही करा कि मैट्रिमोनियल अलायंस होता है, और मैट्रिमोनियल अलायंस में चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी होती है लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से. अब इसकी इम्पोर्टेंस चंद्रगुप्त के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के काल के काल में सिर्फ एक ही टाइप के सिक्के इशू हुए हैं, जिसको कहते हैं किंग क्वीन टाइप कॉइन्स. उसमें आप देखोगे ना तो जो ऑब्वर्स है, ऑब्वर्स बेसिकली कॉइन के उस हिस्से को कहते हैं जहाँ पे चेहरा बना हो, तो राजा का चेहरा या इशूइंग अथॉरिटी का. तो ऑब्वर्स में आप देखते हैं कि एक तरफ चंद्रगुप्त फर्स्ट है और दूसरी तरफ उनकी रानी कुमार देवी है. और चंद्रगुप्त कुछ कुछ सिक्कों में दिखाया गया चंद्रगुप्त उनको कुछ दे रहे हैं.
अच्छा.
कुछ में आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि रिंग दे रहे हैं कुछ में कुछ, और रिंग को स्कॉलर्स कुछ कहते हैं कि ये बेसिकली चूड़ी है कोई. और कुछ में रिंग की जगह कुछ ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो कुछ जैसे ए एस आल्टिगर, बेसिकली उन्होंने गुप्ता कॉइनेज पे बहुत काम करा है, तो वो कहते हैं कि सिंदूरदानी है. तो और देखो क्योंकि इंपॉर्टेंस देखे कि इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी गुप्ता प्रिंसेस इतनी प्रोमिनेंट पोजिशन में, गुप्ता क्वीन जो है इतनी प्रोमिनेंट पोजिशन में नहीं डिपिक्ट हुई. और इंटरेस्टिंगली जो रिवर्स आप देखोगे ना, तो रिवर्स में लक्ष्मी जी की फोटो है, नीचे उन्होंने लिच्छवया करके लिख रखा है
कि पूरी इंपॉर्टेंट.
हाँ, पूरी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भैया आपकी वजह से मतलब अलायंस हुआ है. तो चंद्रगुप्त का तो समझ में आता है कि भाई वो ब्रिजी एक लिच्छवी एक स्टेब्लिश्ड पावर थी, इसलिए वो अलायंस करना चाहते हैं. लेकिन लिच्छवियों को ऐसा क्या पड़ गया था कि उनको अलायंस करना था? तो एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन जो था उसकी वजह से, दूसरा मेरे हिसाब से एक ये भी है कि लिच्छवियों को जो एक जैसे इस समय का पर्सपेक्टिव था ना, वो उनको बोलते थे फॉलन क्षत्रियस, व्रातिक क्षत्रिय बोलते थे. मनु ने लिख रखा है
इसको
लिच्छवियों को.
अच्छा.
तो एक मेरे हिसाब से एक अटेम्प्ट था कि भाई हम अपनी शादी जो है एक वेल मतलब एक जो कि डोमिनेंट व्यू में एक अच्छा परिवार कहा जाता है उससे शादी करेंगे तो एक हमारा मतलब वो बन जाएगा. तो चंद्रगुप्त के काल में, और इंटरेस्टिंगली जब चंद्रगुप्त का असेशन होता है 319 AD के अराउंड, तो यहाँ से शुरुआत होती है गुप्ता एरा की. गुप्ता एरा की जितनी भी इंस्क्रिप्शंस है ना, वो हमेशा ऐसे बात होगी तो इन द ईयर 68 ऐसे करके इंस्क्रिप्शन शुरू होती है. तो 68 बेसिकली 68 साल चंद्रगुप्त के राज्यभिषेक के बाद. तो इसलिए इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त का पीरियड है क्योंकि वहां से गुप्ता एरा की शुरुआत होती है. और ये जो लिच्छवी का जो संबंध था लिच्छवी और गुप्ता का, समुद्रगुप्त के लिए इंपॉर्टेंट हुआ. और समुद्रगुप्त अपने इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं लिच्छवी दौहित्र. दौहित्र संस्कृत में कहते हैं बेसिकली नाती को, तो लिच्छवियों का नाती.
अच्छा.
तो वो भी ये जो अपनी लेगेसी थी इसको कंटिन्यू कर रहे थे. और समुद्रगुप्त के पीरियड में हम देखते हैं कि जो दोनों की टेरिटरी थी बेसिकली ईस्टर्न यूपी और लिच्छवियों का जो बिहार रीजन था वो एक कंबाइन हो जाता है.
अच्छा. तो इसमें इसके बाद फिर एक जो फेमस जो मतलब बहुत चलता है वो ये है कि सिविल वॉर भी समुद्रगुप्त के समय पे हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए.
जैसे समुद्रगुप्त के पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद की प्रशस्ति या प्रयागराज की प्रशस्ति जो है. अब उसमें क्या है कि जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें ये लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त अपनी सभा उन्होंने बुला रखी है, उसमें मेंशन है इंस्क्रिप्शन में, और समुद्रगुप्त को बुलाते हैं अपने पास, उसको गले लगाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम जाके धरती की रक्षा करो. तो हिस्टोरियंस ये पॉइंट करते हैं कि भाई ये मतलब डिपिक्ट करने की जरूरत क्या पड़ी समुद्रगुप्त को कि उनका जो राज्याभिषेक था वो चंद्रगुप्त के काल में ही हुआ. और फिर उसके बाद उसकी बाद की लाइंस में हम देखते हैं ना कि एक तो इंस्क्रिप्शन बहुत बुरी हालत में है, तो बाद की लाइन में एक केचित करके कुछ नाम आता है, फिर उसके बाद ये क्षमा रिपेंटेंस ऐसे कर करके शब्द आते रहते हैं। तो कुछ इसको फिर उसके बाद क्या है कि हम देखते हैं कि हमको काच करके एक रूलर के कॉइन भी मिल रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स।
काच
काच, तो अब केचित काच और गोल्ड कॉइन्स मिल रहे हैं। और लेटर में हमको मिल रहा है कि मतलब जहां पे बता दिया कि चंद्रगुप्त को समुद्रगुप्त ने राजा बना दिया है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने समुद्रगुप्त को राजा बना दिया। तो अब स्कॉलर्स का कहना है कि इस पीरियड में बेसिकली जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का सेशन इतना सिंपल नहीं हुआ था, यहाँ पे सिविल वॉर लड़ी गई थी। तो एक स्कॉलर हैं श्रीराम गोयल, उनके हिसाब से जो ये सिविल वॉर थी ये लड़ी गई थी, और सिविल वॉर में बेसिकली क्या था कि गुप्त कोर्ट के दो फैक्शन बन चुके थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शादी करी थी लिच्छवी से, तो एक फैक्शन जो था, अब जैसे लिच्छवियों का हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि लिच्छवी रिपब्लिक ट्रेडिशन से आते थे, ये गुप्ता मोनार्कियल ट्रेडिशन से आते थे। तो जो गुप्त कोर्ट में दो फैक्शन बन गए कि एक फैक्शन था जो लिच्छवी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, तो लिच्छवी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तो आप समुद्रगुप्त को सपोर्ट कर रहे हो, और एक फैक्शन बन गया था कि जो गुप्ता मोनार्कियल ट्रेडिशन है उनका उनका था कि भाई लिच्छवियों का जो इन्फ्लुएंस है इतना कि मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट कोई मतलब अपने सिक्के भी कर रहा है तो उसमें लिच्छवा है लिख रखा है, इतना इन्फ्लुएंस जो बढ़ रखा था उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक सेकंड पार्टी बन रखी थी, और उसका जो बेसिकली हीरो या नेता जो था वो ये काच था, परमेश्वरी लाल गुप्ता करके हैं उनके हिसाब से, ये स्टेप ब्रदर था जो काच था वो समुद्रगुप्त का। लेकिन
और ये सब जो फैक्शनलिज्म की जो आप बात कर रहे हो ये इसके सोर्स क्या है?
सोर्स नहीं, स्पेकुलेशन है ये।
अच्छा,
प्योर स्पेकुलेशन है
यार। तो, क्या है यार, पूरी कहानी सुना दी तुमने और ये कह रहे हो स्पेकुलेशन है।
नहीं तो उसमें आप ये देखिए
किस किस स्पेकुलेशन है
ये श्रीराम गोयल की, उनके वो मतलब बुक बहुत अच्छी है, उसमें स्पेकुलेशन बहुत अच्छी अच्छी मिलती है।
तो ये पूरी जो सिविल वॉर की पूरी कहानी है, ये सिविल वॉर तो हुई है ना?
नहीं, वी आर नॉट श्योर। उसमें काच का एंगल है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि भाई ये कुछ सेकंड नेम था स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त का, कुछ कहते हैं बाद का कोई रूलर था उसने अपना नाम काच लिख रखा था। तो क्योंकि इंस्क्रिप्शन कुछ है नहीं, और जो इंस्क्रिप्शन है वो भी डैमेज्ड है समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त राजा बन जाते हैं।
इस सिविल वॉर का क्या कॉन्सिक्वेंस क्या है?
कॉन्सिक्वेंस
और इम्पोर्टेंस
एज सच कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं है, लेकिन एक जैसे बाद के रूलर्स में ना हमको एक क्लियर सजेशन मिलता है, क्लियर एक वो मतलब मिलता है कि भाई इतना स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होता था एक राजा में दूसरे राजा में, गुप्त डायनेस्टी में खासकर। तो
अच्छा, ये मतलब इसी उस समय की दिक्कत है या इस डायनेस्टी की प्रॉब्लम?
इस डायनेस्टी में तो स्पेशली खासकर, क्योंकि देखिए अभी समुद्रगुप्त में ये दिक्कत थी या नहीं अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है।
बिल्कुल,
चंद्रगुप्त सेकंड जो कि समुद्रगुप्त के बेटे थे उनके बारे में तो क्लियरली है कि उनमें लड़ाई हुई थी। फिर उसके बाद कुमारगुप्त जो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद है उनके बारे में भी लगभग क्लियर है, और फिर स्कंदगुप्त के पीरियड में तो हम 100% जानते हैं कि वो हुई थी। मतलब जो एक परसेप्शन है कि गुप्त का बड़े प्यार प्यार से राजा बन रहे थे तो वो इतना आसान नहीं है। लेकिन समुद्रगुप्त जो है सिविल वॉर का कुछ इम्पैक्ट पड़ा ये तो नहीं था, लेकिन समुद्रगुप्त एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ एंशियंट इंडिया और दी ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी।
और उसका वो ये जो आप तमगा पहना रहे हो समुद्रगुप्त को, ये इसका कारण क्या है?
जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, इलाहाबाद प्रशस्ति में हमको जो समुद्रगुप्त ने कॉन्क्वेस्ट करी थी उसके बारे में बता रखा है। अब
सब तो इनका जैसे समुद्रगुप्त ने जब राजा बने उस समय उनका कितना मतलब गुप्ताओं का कितना साम्राज्य था?
अभी साम्राज्य नहीं, अभी तो बस बेसिकली मतलब किंगडम टाइप की थी।
सर, तो बेसिकली वही
ईस्टर्न यूपी और ये जो लिच्छवियों की टेरिटरी,
वो तो समुद्रगुप्त ने शादी किया तब हुआ ना?
नहीं, चंद्रगुप्त ने करी थी ना, उसके बाप ने करी थी शादी।
ठीक,
समुद्रगुप्त तो अपने आप को लिच्छवियों का नाती कहते हैं ना।
हाँ।
तो उनके समय तक जो टेरिटरी थी लिच्छवियों की उनके पास आ चुकी थी। तो अब बेसिकली हमारे पास क्या है कि एक तरह से ईस्टर्न यूपी और बिहार का रीजन ये समुद्रगुप्त के पास में है, और जैसे कि आपने पहले देखा कि मौर्यों का भी ये कोर था, और उसमें एक पर्सपेक्टिव ये मतलब मेरे हिसाब से बहुत ऑब्वियस है कि गुप्त जो रूलर्स थे स्पेशली समुद्रगुप्त को ना मौर्यों के बारे में पता था।
अच्छा,
और एक अटेम्प्ट
मतलब वो एक हाँ मतलब वो उस एरिया से भी थे
हाँ।
और क्योंकि भारत के परिपेक्ष में भी
हाँ।
वो कहीं ना कहीं ये होगा कि ग्रेट डायनेस्टीज में से हाँ।
एक क्योंकि इन्फ्लुएंस और एक एम्बिशन टू रिक्रिएट द ग्लोरीज ऑफ द मॉडर्न पीरियड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको ना सेंट्रल इंडिया से लायन कैपिटल मिले हैं जो कि आज हमारा नेशनल सिंबल है। वो तो अशोक का था बेसिकली, गुप्त पीरियड में भी उसको रिक्रिएट करा गया था।
अच्छा,
लायन सिंबल्स को, सॉरी लायन कैपिटल को।
बट इसके अलावा लायन सिंबल तो ठीक है एक सिंबल हो गया, लेकिन हमको क्या पता चलता है उनका एम्बिशन क्या था? जैसे आपने कहा कि वो मौर्यस के बारे में जानते थे, तो वो मतलब ये कैसे पता चलता है कि जानते थे और वो किस रेफरेंस में ये हमको पता चलता है? उससे ये भी पता चलेगा कि क्या चाहते थे।
देखिए कहीं इंस्क्रिप्शन में तो कहीं नहीं लिख रखा है समुद्रगुप्त ने कि आई वांट टू रिक्रिएट द ग्लोरियस,
वो तो बिल्कुल
मॉडर्न एम्पायर। लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई जो अशोकन कैपिटल है, अशोकन कैपिटल मतलब उस पीरियड में तो लोगों को पता था कि मॉर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता था और उस समय के जितने भी मतलब ट्रेडिशन रहा होगा उसमें तो ऑब्वियसली मौर्य भाई अभी कितने आपके 700-500 साल के करीब हुए हैं, तो एक ट्रेडिशन अलाइव तो रहा होगा कि एक मौर्य एम्पायर रहा होगा और जितने भी गुप्ता पिलर्स थे मौर्यन पिलर्स थे वो उनके सामने थे। तो ये उनका अटेम्प्ट लायन कैपिटल ही क्यों बना रहे हैं भाई? बनाने के लिए तो कुषाण पीरियड में देवकुल कुषाणों ने बनाए थे, उनको रिक्रिएट करना होता कुषाणों जैसा तो फिर देवकुल बनाते। लेकिन जो अब वो लायन कैपिटल बना रहे हैं बोध गया में, आप देखोगे ना तो जो पिलर्स हैं बोध गया के वो ओरिजिनली मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न पीरियड के हैं। गुप्त पीरियड में वैसे ही पिलर बनाने की कोशिश की गई है।
अच्छा,
कि मतलब एक तरह से रेनोवेशन।
तो हमको मतलब एज अ टेक्सचुअल और इंस्क्रिप्शन में कुछ नहीं मिलता है,
एक स्पेकुलेटिव है लेकिन मेरे हिसाब से स्पेकुलेशन
बस ये है ना कि ये जो फिगर्स हैं
हाँ।
उनको रिक्रिएट करने की कोशिश है एंड
हाँ।
फ्रॉम उससे हमको लगता है कि एस्पिरेशनल चीज है
और एक सेम रीजन में भी तो आ रहे हैं,
सेम रीजन में है हाँ। और एस्पिरेशनल उनका हाँ। वो है इसलिए वो उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं।
और दूसरा चीज़,
लिखा कुछ नहीं हुआ है,
लिखा नहीं। और दूसरी चीज आप ये भी तो देखिए, समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति जो है वो किस पे लिखवाई थी?
किससे?
अशोकन पिलर पे लिखवाई है। एक चाहते तो भाई वो एक पत्थर पे अपना उकेर देते इंस्क्रिप्शन। तो एक आपने एक क्लियर अटेम्प्ट है ना आपको कि भाई एंटीक्विटी से मॉडर्न से आपको आपको रिलेट करना है, तो आप अपनी इंस्क्रिप्शन भी जो है वो अशोकन पिलर पे क्या कहते हैं इंस्क्राइब करवा रहे हो।
तो ये मॉडर्न एस्पिरेशन है या अशोकन एस्पिरेशन है?
नहीं, कॉन्क्वेस्ट तो अशोकन पिलर हम कहते हैं अशोकन पिलर,
क्योंकि नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उनके समय में क्या अशोक की भी वो इमेज थी एज अ ग्रेट एम्परर?
अशोक की नहीं तो, लेकिन मॉडर्न एम्पायर की तो सर्टेनली
एम्पायर की थी
हाँ। और okay. और वैसे भी अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखो ना तो मेजर कॉन्क्वेस्ट जो थी वो चंद्रगुप्त और बिंदु बेसिकली चंद्रगुप्त के पीरियड में हुई।
तो उस समय भी क्या लोग मतलब हाँ ये तो है।
और चंद्रगुप्त तो एक इम्पॉर्टेंट फिगर तो थे ही, विशाख दत्त जो कि चंद्रगुप्त ये समुद्रगुप्त के बेटे के टाइम का कोर्ट पोएट था, उसने तो मुद्र राक्षस लिखी है पूरी चंद्रगुप्त के ऊपर। और जो चाणक्य चंद्रगुप्त कथा है उस पीरियड में बहुत पॉपुलर थी।
वही मैं पूछने वाला था कि जितने आज चाणक्य का नाम लिया जाता है उतना उस समय भी हो।
जैसे कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं ना स्पेशली कि चाणक्य जो था वो बेसिकली चाणक्य जो है वो मॉडर्न एम्पायर के नहीं थे, या वो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि चाणक्य मॉडर्न पीरियड में एग्जिस्ट करते होंगे लेकिन विष्णुगुप्त जिन्होंने या कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी वो एक गुप्ता पीरियड की पर्सनैलिटी थी और बेसिकली कौटिल्य या विष्णुगुप्त को हमने चाणक्य से कनेक्ट कर दिया गया, ये स्कॉलर कुछ का है। तो ये
और इसमें कहीं ना कहीं जैसे नाम जो है
हाँ
इनमें कितने, एक चंद्रगुप्त वन चंद्रगुप्त टू
हाँ
जो इसमें दिखता है हमको
हाँ,
तो वो भी कहीं ना कहीं
फिर एक चंद्रगुप्त थ्री भी स्कंदगुप्त के बाद आता है
हाँ, तो वो भी तो देखिए ना वो हाँ, नाम भी नाम में भी
हाँ, एक नाम में भी आप कह सकते हो
एस्पिरेशन दिखता हाँ, है ना कि उनके लिए वो सबसे बड़ा। जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई अशोकन वो था या मतलब वो था मौर्यन एस्पिरेशन था, तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त उनके लिए अशोक से बड़े थे।
नहीं वो तो है। फिर उसके बाद जैसे तो यही जो एक डिजायर टू रिक्रिएट द ग्लोरी ऑफ द मौर्यन पीरियड तो वो कंपेल करता है। और सबसे पहले जैसे जब आप जो प्रशस्ति है प्रयागराज वाली वो पढ़ोगे आप ना तो उसमें पढ़ने से क्लियर हो जाता है कि वो क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स नहीं मेंशन है, क्योंकि उसमें सबसे पहले मेंशन आता है जो सदर्न कैंपेन थी उसका। लेकिन आप वैसे देख सकते हैं कि सबसे पहले समुद्रगुप्त ने जो कैंपेन करी थी वो बेसिकली आर्यावर्त कैंपेन, आर्यावर्त टर्म ही यूज करी गई है नॉर्दर्न इंडिया के लिए बेसिकली.
हाँ नाम तो वही था.
और उसमें हमको बताया है कि 9 रूलर्स थे, 9 रूलर्स को उन्होंने उनका संहार करा है, वॉयलेंट एक्सटर्मिनेशन. ये
हाइपरबोले है या वास्तव में?
देखिए ये हाइपरबोल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब आप वो सदन, जो सदन एक्सपेडिशन की बात करते हैं ना, उसमें टर्म वो इस्तेमाल करते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह, मतलब लोगों को, मतलब उनको पहले कोई सरेंडर करके उनको फिर लिबरेट कर दिया गया.
अच्छा.
तो और दूसरा भी आर्यवर्त,
इनका जो टेरिटरी इन्होंने लिया वो भी 9 का उनका नाम है.
हाँ 9 का वो नाम देते
कौन सा है?
जैसे इम्पोर्टेंट रूलर तो आपके ये हो गए, एक कोटा रूलर करके है.
अच्छा.
कोट बेसिकली ये आपका दिल्ली और कुछ पार्ट हरियाणा का था.
अच्छा.
यहाँ पे रूल करते थे. फिर एक अच्युत राजा है.
हाँ.
वो बेसिकली जो आपका अहिछत्र आज का बरेली रीजन है वहाँ पे. फिर जो नाग, दो गणपति नाग और नागसेन, ये आपके सेंट्रल इंडिया में थे.
मालवा.
तो, हाँ मालवा सेंट्रल इंडिया में. तो ये सब ऐसे रूलर्स थे जिनको इन्होंने क्या कहते हैं वॉयलेंट, अब मारा हो नहीं हो लेकिन ये तो क्लियर था कि यहां से ऐसा नहीं था कि इनको कहा कि भाई अब तुम रूल करो बस हमने जीत लिया है और तुम. लेकिन जो सेकंड कैंपेन थी या फिर जो थर्ड कैंपेन थी, बेसिकली जो सदन कैंपेन थी, सदन कैंपेन में देखते हैं कि हम समुद्रगुप्त कांची तक जाते हैं और इसमें भी जो रूट है ना, रूट वो बेसिकली लेते हैं उड़ीसा के थ्रू जाते हैं. उड़ीसा के थ्रू जाते हैं और कांची तक पहुंचते हैं. लेकिन ये वाली एक तरह से आप कह सकते हो एक पावर डिस्प्ले टाइप का था क्योंकि उसके बाद हमको कोई गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पे रूल देखने को नहीं मिलता. तो बेसिकली सबसे पहले जरा पीछे आ जाते हैं कि जो आर्यवर्त टेरिटरी है, ये 9 रूलर्स को उन्होंने मार दिया है या उनकी टेरिटरी पे अपना कब्जा कर दिया है. फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि वो प्रत्यांत रीजन जो है उस पर कॉन्कर करते हैं.
तो रीजन
प्रत्यंत, प्रत्यंत बेसिकली संस्कृत में कहते हैं प्रत्यंत, सॉरी प्रत्यंत फ्रंटियर स्टेट्स को कहते हैं. फ्रंटियर
मतलब नहीं, मतलब एट द फ्रंटियर्स ऑफ द बॉर्डर.
हाँ अब आर्यवर्त रीजन के जो फ्रंटियर में थे, जैसे उसमें नाम आता है कि नेपाल
ऑन द नॉर्थ साइड.
हाँ नेपाल, समतट, समतट बेसिकली आज का जो बांग्लादेश रीजन है वो.
अच्छा.
फिर उसके बाद कामरूप, असम, देवक, देवक भी गुवाहाटी के आसपास का है. फिर एक कीर्तरपुर ऐसे कुछ करके टर्म है,
कीर्तपुर.
हाँ कीर्तपुर. तो उसमें क्या है कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कपूरथला है, कुछ कहते हैं कुमाऊं है, और कुछ कहते हैं कि ये लाहौर के आसपास का इलाका है. फिर उसके बाद क्या है कि हमको बताते हैं वो जो रिपब्लिक्स है उनका भी मेंशन आता है, मालव, यौधेय, अर्जुनायना, मद्रक, इनका कि इनको भी उन्होंने क्या कहते हैं.
तो ये तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो गया. साउथ में क्या लिमिट है?
साउथ में बेसिकली नर्मदा तक पहुंच गए थे.
ठीक.
और फिर ये क्या कहते हैं जो फ्रंटियर स्टेट्स को कब्जा करने के बाद ये फाइनली फिर जो सदर्न एक्सपेडिशन है वो लेते हैं. सदर्न एक्सपेडिशन में 14 राजाओं का उन्होंने नाम दिया है. और लेकिन वो आप कहते हैं कि मैंने सारे के सारे जो सदर्न रूलर्स थे उनको जीत लिया था. तो वो भले ना, और इंटरेस्टिंगली आप जब इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें बड़ा मतलब प्राउडली वो बताते हैं कि मेरे को जो लड़ाइयों से जो मेरे को स्कार्स हैं वो ग्लोरीफाई करते हैं. तो एक वो. फिर उसके बाद हमको क्या वो बताते हैं कि ये सब जो स्टेट्स थी, फिर जो बाहर की जो फॉरेन स्टेट्स हैं उनके भी नाम आते हैं, जैसे कि देवशाही, शाहनुशाही. ये बेसिकली जो लेटर कुशांस थे, मोस्ट स्कॉलर्स के हिसाब से लेटर कुशानों की बात हो रही है. शक का मेंशन है, मुरुंड, सिम्हला जो आपके श्रीलंका थे. एक चाइनीज सोर्स है वो बताता है कि एक चाइना का सॉरी एक श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन करके. उसने समुद्रगुप्त के पास एक पटिशन भेजी कि उन गिफ्ट्स के साथ कि मैं जो बोधगया का बोधगया जो फेमस पिलग्रिमेज साइट है वहाँ पे एक सेंचुरी मतलब बनाना चाहता हूँ जिससे कि जो श्रीलंका के जो भक्तजन आते हैं वहाँ पे उनके लिए. तो समुद्रगुप्त का जो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो एक मेजर कॉन्क्वेस्ट जो हुई है सारी की सारी, उसके बाद मतलब एक ग्रेट एक्सपेंशन जो था वो समुद्रगुप्त के पीरियड में हुआ था गुप्ता एम्पायर.
तो ये जो हम वास्ट एक्सपेंस देखते हैं पूरा जो एट इट्स ग्लोरी गुप्ता एम्पायर, वो यहाँ पे अचीव हो गया था इनके. हाँ. इनके समय में.
हाँ लेकिन ना उसमें जैसे आप मैप देखोगे ऑनलाइन ना, तो उसमें वो क्या करते हैं सदन वाली जो एक्सपेडिशन है उसको भी ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से सदन वाला लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सदन एरिया को लोगे, सदन एरिया में कोई हमको सिक्के नहीं मिले हैं, कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं मिली हैं। वो बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी वो एक शक्ति प्रदर्शन टाइप का था।
तो मतलब सिर्फ इंस्क्रिप्शन के अलावा हमारे पास कोई सोर्स नहीं है सदरन एक्सपेडिशन को दिखाने के लिए?
नहीं, उसमें एक
एटलीस्ट एक्सपेडिशन की बजाय इफ़ यू यूज द वर्ड कॉन्क्वेस्ट,
हाँ
मतलब जीतता तो नहीं होगा उस सेंस में, एक इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है।
हाँ उसमें बस एक ये है कि जैसे कांची का एक रूलर बताया गया विष्णुगोप, विष्णुगोप के वर्णन जो है वो नॉन गुप्ता सोर्सेज में साउथ इंडिया के में आता है।
अच्छा,
तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये क्रेडिबल था। जैसे कुछ हिस्टोरियंस तो मानते ही नहीं है कि समुद्रगुप्त गया भी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं, लेकिन एक्सपेडिशन हुआ होगा। लेकिन आप कहोगे भाई कॉन्क्वेस्ट हो रखा है वहाँ पे, गुप्ता गवर्नर्स आ रखे हैं, तो वो नहीं था।
तो ये कंपेयर करें अगर मौर्यन एम्पायर से, तो ये उस सेंस में कितना अलग है?
उस सेंस में तो बहुत अलग है। आपको हमको
मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मौर्य एम्पायर में क्या हमको मिलता है, क्या वहाँ के गवर्नर्स?
हाँ, मौर्य एम्पायर में जो कर्नाटक का रीजन है वहाँ से हमको जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं अशोक की, उसमें क्लियरली पता लगता है कि यहाँ पे एक मौर्य प्रिंस अशोक का बेटा यहाँ पे एज अ गवर्नर वॉइस रॉय था।
अच्छा, तो उस सेंस में ये अलग है।
और वैसे दूसरी बात ये है ना कि भाई इतनी सारी इंस्क्रिप्शंस हमको मिल रही हैं कर्नाटक रीजन में, फिर उसके बाद जो जैसे एक यहाँ पे आंध्रा में इंस्क्रिप्शन है मौर्य पीरियड की, लिखी इंस्क्रिप्शन पूरी की पूरी ब्राह्मी में है, लेकिन जो राइट जिसने लिखवाई है ना वो अपना साइन जो है वो करता है खरोष्ठी स्क्रिप्ट में।
अच्छा।
खरोष्ठी स्क्रिप्ट थी आपकी नॉर्थ वेस्ट की, तो बेसिकली वो नॉर्थ वेस्ट का ओरिजिनली रहने वाला था, वो आया यहाँ पे इंस्क्राइब करने इंस्क्रिप्शन, और अपनी जो सिग्नेचर टाइप का है वो करता हो खरोष्ठी में। तो एक तरह का वेल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आपको मौर्यों का देखने को मिलता है, उस सेंस में तो गुप्ता का था ही नहीं।
ठीक है, तो ये इनका एक्सपेंस था। इसके बाद चंद्रगुप्त टू आते
हैं। हाँ, तो चंद्रगुप्त,
लेकिन इसमें वही सक्सेशन वाली बात आ गई ना, तो यहाँ पे भी क्लियर नहीं है सक्सेशन। तो कौन पहले राजा, क्या उसके समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त दो का नंबर आया या कुछ गड़बड़?
नहीं, इसमें जैसे अगर जैसे इसलिए एंशंट इंडियन हिस्ट्री में ना बहुत सारी चीजें हमको, जैसे आपने खुद ही देखा कि आदि तो स्पेकुलेशन पे काम चल रहा है। तो अगर आप 1920 की किताब उठाएंगे अगर आप ना, तो वहां पे क्लियरली लिख रखा है कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकेंड राजा बने। लेकिन 1923 में एक फ्रेंच इंडोलॉजिस्ट थे एस लेवी करके, उन्होंने 6 हिस्से एक संस्कृत प्ले के खोजे जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त ने लिखा था। विशाखदत्त के और भी पॉपुलर है जैसे मुद्र राक्षस एक पॉपुलर।
कौन से पीरियड की है ये?
ये बेसिकली 5th-6th सेंचुरी का था। तो विशाख देवी चंद्रगुप्त की स्टोरी क्या है, देवी चंद्रगुप्त में आता है कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त का बड़ा भाई, चंद्रगुप्त सेकंड का बड़ा भाई या समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा रामगुप्त राजा बनता है, और उसकी लड़ाई जो है वो शकों से हो रही है,
और शक गुजरात में है।
हाँ, शक गुजरात में है। उसके मतलब वैसा जो है वो टेक्स्ट में नहीं आता, लेकिन हम जानते हैं शक गुजरात में है। तो रामगुप्त की लड़ाई हो रही है शकों से, और एक पॉइंट पे हारने की स्थिति में रामगुप्त होते हैं, और जो शक राजा होता है वो ये ऑफर करता है कि भैया हम आपको छोड़ देंगे, आप अपनी पत्नी जो है ना वो हमारे कैंप में हमको दे दो, और रामगुप्त राजी हो जाते हैं। अब ये बात पता चलती है उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड को। तो चंद्रगुप्त सेकंड क्या करते हैं कि अपनी भाभी का वेश बना के या रामगुप्त की क्वीन का वेश बना के वो जाते हैं शक राजा के कैंप में और उसको मार देते हैं, और फिर उसके बाद शकों को जीत लेते हैं। ये स्टोरी है। और फिर उसके बाद क्या है कि जब मार दिया तो भाई जाहिर सी बात है कि जो जनता है, जनता में तो बड़े पॉपुलर बन गया हो आप, क्योंकि आपका जो बड़ा भाई है वो तो बहुत कायर था, तो एक जेलसी फैक्टर हो जाता है रामगुप्त के कि मेरा जो छोटा भाई है बताओ उसने ये सब कर दिया। तो अपनी जान बचाने के लिए ना कुछ साल जो है चंद्रगुप्त पागलों जैसे बिहेव करता है कि मैं तो पागल हो गया कि मेरी जान बच जाए, मेरे को खतरा ना समझे। और फिर एंड में जो बीच में क्या होता है वो सब हमको नहीं पता, क्योंकि पूरा टेक वो जो टेक्स्ट है वो हमारे पास है नहीं, लेकिन एंड में ये होता है कि चंद्रगुप्त सेकंड अपने बड़े भाई को मार देता है और अपनी जो भाभी है उससे शादी करके देवी देवी चंद्रगुप्त से फिर राजा बन जाता है। अब इस स्टोरी के आधार पे बहुत लोग स्कॉलर्स क्या कहते थे, उनके हिसाब से ये कहना था कि भाई ये सिर्फ लिटरेचर में लिख रखा है, हमारे पास कोई एविडेंस तो है नहीं। तो बहुत लोग स्कॉलर्स ये स्केप्टिकल थे इस क्लेम को लेके। लेकिन आप बाकी के जो लिटरेचर देखो, जैसे बाण की हर्षचरित 7th century में लिखा गया था, हर्षचरित में रामगुप्त का वर्णन आता है। फिर हमको इंस्क्रिप्शन मिली है राष्ट्रकूटों की जो 8th-9th century में थे, उनमें भी क्या कहते हैं रामगुप्त का मेंशन है। और फिर उसके बाद विदिशा का जो इलाका है ना, विदिशा के इलाके से हमको 3 statues मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, जिनमें मेंशन हो रखा है कि ये महाराजा धीराज रामगुप्त के द्वारा बनाई गई थी। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमको कॉइन्स मिले हैं रामगुप्त के
ये तो फिर,
और सारे के सारे जो है वो ईस्टर्न।
और ये सारा जो एविडेंस मिला ये हमको 1920 के बाद मिला है,
1923 के बाद।
हाँ, जब वो 1920 में तो उन्होंने लिख दिया,
1920 में तो सिंपल था कि भाई चंद्रगुप्त सेकंड बन गया इसका समुद्रगुप्त
के बाद, तो वो थ्योरी कंटेस्ट होने लगी। फिर
इतने सारा एविडेंस मिल गया। अब फिर क्या है कि अब सिक्के मिल रहे हैं ईस्टर्न मालवा से रामगुप्त के, लेकिन उसमें अभी भी कुछ स्केप्टिकल स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि भाई ये जो रामगुप्त है ना, क्योंकि जो ये सिक्के मिले सारे के सारे कॉपर कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन्स है नहीं। तो उनका ये कहना है कि भाई गोल्ड कॉइन्स नहीं है तो एक जो गुप्त राज है वो तो भाई गोल्ड कॉइन्स के लिए बहुत मशहूर थे गुप्ता रूलर्स, तो गोल्ड कॉइन नहीं है, मतलब कि ये कोई लोकल मालवा रूलर था जिसका नाम रामगुप्त था।
ये भी अच्छी थ्योरी है, लेकिन
अब दिक्कत क्या है ना, एक स्कॉलर हैं KD वाजपेयी, उन्होंने ये रामगुप्त के कॉइन्स एनालाइज करे, तो 2 types के कॉइन हमको मिलते हैं ये जो कॉपर कॉइन्स हैं। एक है जिसको कहते हैं लायन टाइप कॉइन, एक है गरुड़ टाइप कॉइन। अब गरुड़ जो है, गरुड़ सिंबल था, एक एम्बलम था, गुप्ता एम्बलम, गरुड़ ध्वज का बहुत मेंशन आता है इंस्क्रिप्शंस में। और जितने मेजॉरिटी जो कॉइन हैं रामगुप्त के, वो सारे वो हैं गरुड़ ध्वज के कॉइन। तो उसमें KD वाजपेयी ये आर्ग्यू करते हैं ना कि भाई गरुड़ सिंबल जो है एक लोकल मालवा रूलर क्यों यूज करेगा। और दूसरी बात, अब क्वेश्चन एक आता है कि भाई चलिए हमने मान लिया कि रामगुप्त एक गुप्ता रूलर थे, लेकिन उन्होंने फिर सोने के सिक्के क्यों नहीं बनाए। तो उनका ये कहना है कि भाई जो ये सिविल वॉर थी ये 2-3 साल चली होगी, और 2-3 साल में जो जहाँ पे सोने के सिक्के बनते थे, जो मिंटिंग जहाँ पे होती थी और जो मिंटिंग प्रेस थी, वो बेसिकली आप अगर मान लीजिए एक बड़े एम्पायर को रूल कर रहे हो, तो जो सोने के सिक्के जहाँ पे आपके कॉइन्स इशू हो रहे हैं वो आपके कोर इलाकों में होंगे ना। जैसे भारत है भाई, अफगानिस्तान में जाके तो अपने सिक्के इशू करवाएगा नहीं।
तो क्या हमको रामगुप्त का कोई भी गोल्ड कॉइन नहीं मिलता?
नहीं, गोल्ड कॉइन नहीं मिलता। तो KD वाजपेयी का ये कहना है ना कि जो गुप्ता गोल्ड कॉइन्स की मिंटिंग जो होती थी, वो इनके जैसे पाटलिपुत्र हो गया या ये प्रयागराज का इलाका हो गया, यहाँ होती थी। और ये इलाके जो थे आपके चंद्रगुप्त के हाथ में थे। रामगुप्त का लगभग क्लियर है कि एग्जिस्ट करता था रामगुप्त। और दूसरी बात क्या है ना कि श्री राम गोयल, जिनकी स्पेकुलेशन बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कहते हैं कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी थी कि रामगुप्त ने शकों को, जो देवी चंद्रगुप्त में आती है, कि शकों से हार कर अपनी जो पत्नी थी उनको देने चला गया था, लेकिन चंद्रगुप्त ने वीरता दिखाते हुए शकों को मार दिया, ये सब जो पूरी स्टोरी है ये बेसिकली एक ये एक तरह से आप कह सकते हो प्रोपोगेंडा है कि चंद्रगुप्त का जो एम, मतलब चंद्रगुप्त का रूल को लेजिटिमाइज करने का।
अच्छा,
विशाख दत्त कोर्ट पोएट अगर रहा होगा चंद्रगुप्त सेकंड का, तो जाहिर सी बात है भाई चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई को मारा है, और इतना ये भी क्लियर है कि
उसने मारा है
नहीं उनका, क्योंकि जो देवी चंद्रगुप्त जो देवी है ना उनके, वो बाद में क्या कहते हैं कुमारगुप्त की माँ थी, तो देवी एक रानी थी।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहीं लिखा है क्या कि उन्होंने मारा है?
नहीं, तो वो आप ये बताओ, अगर आप राजा रहोगे तो
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो मर गया हो।
हाँ,
और फिर जो छोटे भाई ने शादी कर लिया उसके साथ, उसकी पत्नी के साथ।
नहीं, आप अगर मर भी गया होगा तो वो कॉइन्स क्यों इशू करता? वो माल
कॉइन तो जब इशू किए होंगे ना, जब उसने वो किया होगा, जब वो राजा होगा, लेकिन जब वो मर गया उसके बाद उसके छोटे भाई ने शादी कर ली उसकी जो पत्नी थी, और वो राजा बन गया।
नहीं तो इसमें ये है ना, क्या कहते हैं,
ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है?
नहीं, पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है ना क्योंकि अगर मान लीजिए अगर रामगुप्त नॉर्मल वे में सिविल वॉर नहीं होती, 3 या 4 साल ही भले राज करता, आपका ये कहना है ना कि सिविल वॉर मान लीजिए अगर नहीं हुई, तो फिर उसके सारे के सारे कॉइन हमको ईस्टर्न मालवा में क्यों ही मिलते?
तो मतलब आपका कहना है कि वो ईस्टर्न मालवा में वहां
उसका बेस बना रखा था।
अच्छा,
क्योंकि अगर मान लीजिए वो एक तरह से नॉर्मल गुप्ता रूलर होता तो अपने
गोल्डन कॉइन गुजरात में वो लड़ रहा है, मान लीजिए शाक के खिलाफ
नहीं, शाकों से लड़ाई हुई थी, ये कहीं है वो नहीं है एविडेंस।
अच्छा,
ये तो देवी चंद्रगुप्त में
ये पूरी स्टोरी, अच्छा, उसकी स्टोरी है।
तो यही आर्ग्यूमेंट है श्री राम गोयल का कि ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है ना कि रामगुप्त को बना दो कि भाई इतना वो कायर था कि अपनी पत्नी को देने चला गया, ये पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा है चंद्रगुप्त सेकंड का। और ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है अपना जो रूल है वो लेजिटिमाइज करना चाहते हैं कि अपनी भाभी से शादी कर ली और क्या कहते अपने भाई को मार दिया था।
ठीक,
तो चंद्रगुप्त, तो ये जो स्टार्टिंग स्ट्रगल ऐसे हुई। लेकिन अब चंद्रगुप्त के काल में एक इम्पॉर्टेंट जो वॉर होती है वो बेसिकली होती है शक कॉन्क्वेस्ट। जो शक थे वेस्टर्न क्षेत्र, अब हमने पहले मेंशन करा था कि जो कुषाण के पीरियड में कि सातवाहनों के साथ खूब लड़ाई हुई थी उनकी, तो इस समय वो गुजरात के रीजन में रूल कर रहे हैं और 300 साल के लगभग इनका रूल था, 300 साल से गुजरात में
वहां पे सिमट गए थे पहले तो।
हाँ, पहले तो बहुत बड़ा रीजन था लेकिन अभी भी एक सब्सटेंशियल पावर थे। और सब्सटेंशियल पावर होने के कारण हम देखते हैं कि जो प्रिपरेशन थी, समुद्रगुप्त ने इनको कॉन्कर नहीं करा था, समुद्रगुप्त ने इतने लोगों को कॉन्कर करा, समुद्रगुप्त लिखते हैं अपने उसमें कि मैंने शकों को भी जो है वो कॉन्कर करा, लेकिन कॉन्कर वॉन्कर कुछ नहीं करा था क्योंकि हमारे जो कॉइन्स हैं शकों के उसमें क्लियरली इशू हो रखे हैं, वो समुद्रगुप्त के पीरियड में इशू हुए हैं, तो कोई मतलब समुद्रगुप्त का कॉन्क्वेस्ट नहीं हुई थी शका रीजन में। लेकिन चंद्रगुप्त जो है, अब भाई आपका जो पिताजी थे वो इतने सक्सेसफुल थे तो आप भी दिखाओगे कि ना, और दूसरा जिस सिचुएशन में उनका जो एसेशन हुआ है बेसिकली सिविल वॉर के बाद, तो एक उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि भाई आपको दिखाना है, प्रूव करना है अपने आप को। तो एक वो बेसिकली जो सबसे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कैंपेन और बहुत स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट कैंपेन होती है उनकी, ये शक कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। अब चंद्रगुप्त के पीरियड के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है हमारे दिल्ली की ही, ये जो लौह स्तंभ या आयरन पिलर कहते हैं, तो उसमें अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उसमें भी डिबेट है कि चंद्र मेंशन हो रखा है उसमें।
अच्छा,
इंस्क्रिप्शन बात करती है किसी चंद्र राजा की। और दूसरी बात यह है कि जो ये आयरन पिलर था ये यहाँ पे नहीं था, इतना भी हमको क्लियर,
विदिशा में था ना?
नहीं, उसमें डिबेट है, मोस्ट स्कॉलर का कहना है विदिशा में था, वो लाया गया था, वो तोमरों के टाइम पे लाया गया था वो, या बाद में लाया गया था उस पर, लेकिन मोस्ट कहते हैं कि विदिशा में था, उदयगिरी के पास। तो चंद्रगुप्त अगर सेकेंड थे, मतलब मेरे हिसाब से सेकेंड थे, तो उसमें बताया जाता है चंद्रगुप्त सेकेंड ये आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में कि चंद्रगुप्त सेकंड की दो मेजर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का वर्णन है। एक तो है कि जो वंग कंट्री है वहां के चीफ्स को उन्होंने हराया और एक भालिका में उन्होंने कॉन्कर करा। अब वंगा कंट्री बेसिकली आपका जो ये बंगाल का रीजन है ये है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जब सिविल वॉर थी ना तो ये वाला जो रीजन था उन्होंने कहा कि भाई अब हमारे पास अच्छा मौका है, क्योंकि अभी समुद्रगुप्त के पीरियड में तो ये गुप्त एम्पायर के पार्ट हुए थे, तो इन्होंने सोचा कि अब हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही समुद्रगुप्त फ्री होते हैं तो इनको हरा भरा देते हैं। अब जो भालिका कैंपेन है, भालिका कैंपेन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना क्योंकि ये जो कैंपेन है ये बेसिकली था प्रिपरेशन में कि समुद्र जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनको शकों से लड़ना है गुजरात में।
अच्छा,
क्योंकि आप देखिए जो शक थे उनको एक्सेस था हॉर्सेस का। हॉर्सेस इंडिया में दो रास्ते से आते थे, एक तो सी रूट के थ्रू आते थे और एक आते थे आपके लैंड रूट के, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान से होके। वैसे अब जो सी रूट था, सी रूट बेसिकली गुजरात महाराष्ट्र वाला था, गुजरात में भी शक है तो वो क्यों आपको देंगे, ब्लॉक कर रखा है उन्होंने। और यहाँ क्या था कि यहाँ पे भी जो गुप्ता एम्पायर था वो बेसिकली आपका अफगानिस्तान तक तो था नहीं, मद्रकास बेसिकली आपके कहाँ तक, आपके पंजाब का रीजन हो गया, पंजाब रीजन में भी उनका पूरा रूल नहीं था। तो आपको एक्सेस करना है क्या कहते हैं ये हॉर्सेस, 380 एडी में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, अब ये बेसिकली दो 376 के अराउंड चंद्रगुप्त सेकंड राजा बने थे, इतना हमको पता है। 380 एडी में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये होती है कि हिंदू काबुल वैली तक किदराइट्स आ जाते, किदराइट्स बेसिकली हंस थे।
अच्छा,
नॉर्थ वेस्ट में हंस आ रखे हैं। तो हनों ने मेरे हिसाब से, उन्होंने भी जो हॉर्स की सप्लाई पहले आ रही होगी क्योंकि कट ऑफ कर दी, तो ये एक्सपेडिशन जो था एक तरह से दो कारण रहे होंगे इसके। एक तो प्यूनिटिव एक्सपेडिशन था कि भाई हंस जो है ये काबुल वैली तक आ गए, तो काबुल वैली के बाद तो फिर पूरा खुला ही है। एक तो एक्सपेडिशन प्यूनिटिव एक्सपेडिशन था कि हनों को वहां तक रोकना, और दूसरा था सप्लाई ऑफ हॉर्सेस। और अब इंटरेस्टिंगली क्या है ना कि हम इस एक्सपेडिशन के बारे में इसलिए जानते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है हुंजा वैली में हमको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ब्राह्मी में लिखे गए हैं, जहां पे मेंशन आता है चंद्रगुप्त, चंद्र, विक्रमादित्य, हरिषेण, इन राज। और हरिषेण इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हरिषेण जो था वो राइटर था समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका। तो बेसिकली भाई समुद्रगुप्त के पीरियड में था, तो चंद्रगुप्त के पीरियड में भी रहा ही होगा इंपॉर्टेंट। तो और उसके बाद क्या है, रघुवंश आप पढ़ोगे ना, तो रघुवंश में मेंशन है कि रघु जो है वो कॉन्कर करते हैं पराशिकाओं को, पराशिका बेसिकली पर्शियंस को कहते थे। और उसमें आप डिटेल जो है ना, इतनी जैसे उसमें एक डिटेल आती है कि जब जो घोड़े हैं रघु के, जब वो इस यहाँ पे लड़ रहे हैं ना, तो उनके जो गले के बाल होते हैं ना, वहाँ पे सैफ्रन जो है वो हो रखी है, क्या कहते हैं, फंस गई है।
अच्छा,
मतलब सैफ्रन के खेतों में आप लड़ोगे तो घोड़े जो हैं वहाँ पे इधर सैफ्रन। उसमें इंटरेस्टिंगली डिटेल आती है एक और कि जो हुणों को जब हराते हैं ये, तो हराने के बाद जो हुण थे उनकी जो लेडीज थी, लेडीज में एक बेसिकली मतलब एक ट्रेडिशन क्या होता था, जब उनके जो हस्बैंड्स थे वो मरते थे ना, तो वो अपने जो ये गाल होते थे ना, गाल को फाड़ लेते थे औरतें। तो ये जो ट्रेडिशन है ये चाइनीज सोर्सेस में आता है कि ये हुणों की एक बहुत स्पेशल फीचर था कि उनकी औरतों का, कि ये अपना रोना अलापना फिजिकल हार्म ऐसे करके करती थी। और रघुवंश में यही जो है क्लियर मेंशन हो रखा है, और इंडस क्रॉसिंग का मेंशन है। तो
ये मैच करते हैं सोर्सेस,
मतलब रघुवंश को बेसिकली लोग कहते हैं कि समुद्रगुप्त के उसमें बनाया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये वाला पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ना, ये चंद्रगुप्त का है। तो चंद्रगुप्त ने बेसिकली ये अब सिक्योर कर लिया, हॉर्सेस की सप्लाई आने लगी। अब इनको करना है गुजरात में अटैक शकों पे। अब लेकिन दिक्कत क्या है ना कि जो गुजरात का रीजन है वो है बॉर्डर एरिया, और गुजरात के बगल में जैसे अब नर्मदा है सेंट्रल इंडिया में, नर्मदा तक इनका है, और नर्मदा के नीचे है वकाटक। वकाटकों से इनकी अच्छी बनती नहीं थी, क्योंकि समुद्रगुप्त के पीरियड में समुद्रगुप्त से क्लैश हुआ था वकाटकों का, और वकाटकों को नर्मदा के नीचे ढकेल दिया था समुद्रगुप्त ने।
फिर इन्होंने शादी तो की थी ना,
हाँ, तो दोनों नहीं, उसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि अब चंद्रगुप्त को क्या है कि भाई आपको अलायंस बनाना है, आप अगर गुजरात पे सीधे हमला कर दोगे तो वकाटक तो बैठ रखे हैं, वकाटक आपको क्यों अलाउ करेंगे कि आप गुजरात पे हमला कर दो। गुजरात के बाद जब आपने गुजरात जीत लिया है
तो फिर आप की बारी।
तो वकाटक अगर चाहते तो भाई आप शक से हाथ मिला लेते कि हम दोनों इनको अपोज करते हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड क्या करते हैं, वो ब्रिलियंट एक डिसीजन लेते हैं कि वो अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी जो है वो करते हैं वकाटकों से। अच्छा, जब प्रभावती गुप्ता जो नाम है ना, समुद्र गुप्त होता है और औरतों के लिए प्रभावती गुप्ता आ की मात्रा एंड में लगती है, तो मतलब नाम में गलत नहीं बोल रहा, प्रभावती गुप्ता ही है,
तो मत बदल देना।
हाँ, तो रुद्रसेन सेकंड से शादी होती है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए, वकाटक गुप्ताओं के कंपैरिजन में एक माइनर पावर थी। ट्रेडिशनली हमेशा होता है कि भाई जो बड़ा राजा है, छोटे राजा अपनी बेटी की शादी करते हैं बड़े परिवार में या बड़े राज परिवार में, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। गुप्त जो है वो इतना बड़ा साम्राज्य है, वो अपनी प्रिंसेस की शादी कर रहा है एक कंपैरेटिवली देखा जाए तो एक छोटे माइनर पावर में। और इनके लिए भी अच्छा है, इनको गारंटी मिल जाएगी बेसिकली कि भाई नॉर्थ से कोई अटैक होगा नहीं, तो एक ये भी सिक्योर है। तो ये मैरिज अलायंस करने के बाद इनकी फाइनल स्ट्रगल, मतलब ये जाते हैं कॉन्क्वेस्ट करते हैं गुजरात की। अब आप जितनी भी बुक पढ़ेंगे ना, अभी जितनी पब्लिश हुई है गुप्ता हिस्ट्री पे, सब ये कहेंगे कि चंद्रगुप्त सेकंड ने कॉन्कर कर लिया था गुजरात। 1990 में दो स्कॉलर्स थे, एक अमितेश्वर झा और दिलीप राजगोर करके, उन्होंने एक बुक लिखी है द सोर्सेज ऑफ वेस्टर्न क्षत्रप कॉइन्स ऐसे करके है बुक का नाम। उसमें क्या है कि उसमें वो जब एनालाइज कर रहे थे ना, तो उनको एक सिक्का मिलता है। अच्छा बेसिकली मैं पहले बता दूं कि जो शादी हुई थी ये प्रभावती गुप्ता की, वो बेसिकली 388 एडी के अराउंड हुई थी। और स्कॉलर्स का ये कहना है कि जो चंद्रगुप्त की
शाखाओं के साथ
जो लड़ाई हुई थी वो 409 पीरियड तक चला था। 409 तक
शुरुआत कब हुई थी?
शुरुआत बेसिकली लोग ये मानते हैं कि 400 के अराउंड शुरुआत हो गई थी।
तो मतलब 12 साल पहले ही अलायंस कर लिया इसका मतलब?
12 साल पहले, हाँ मतलब वो अलायंस तो पहले ही हो गया था। और आप कह सकते हो कि क्योंकि इंटरेस्टिंगली क्या है ना कि
तो हो सकता है ना कि मतलब शादी पहले कुछ और कारणों से हुई हो, उसके बाद उन्होंने सोचा हो कि अब तो ये आसान है अटैक करना, इसलिए किया हो।
नहीं, लेकिन एक दूसरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है ना कि जो मिलिट्री बिल्डअप है वो हमको देखने को मिलता है कि मतलब ये ऐसी कैंपेन अच्छा। नहीं थी कि एक साल में, क्योंकि क्या है कि
कई सालों से बिल्डअप हो रहा था।
आपको भाई उनका बेस पूरा का पूरा एकदम सिक्योर बेस है वेस्टर्न क्षत्रप्स का, मतलब रिच भी हैं क्योंकि भारत कुछ ब्रोच जो आज का कहते हैं वो उनका पोर्ट है, तो सी ट्रेड बहुत है। तो वो क्या करते हैं, अपनी शिफ्ट करते हैं विदिशा में जो गुप्ता हैं। और विदिशा में जो मिलिट्री मूवमेंट है हम इससे भी देख सकते हैं ना, हमको तीन इंस्क्रिप्शन मिली है चंद्रगुप्त के पीरियड की। एक मिनिस्टर है चंद्रगुप्त सेकंड का ही, जो कि संधि विग्रही का है। संधि विग्रही का बेसिकली आप कह सकते हो फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर कंबाइंड रहता था। तो संधि विग्रही का जो है वो बोलता है कि वो बेसिकली 82 ये मतलब उसकी जो डेटिंग है गुप्ता एरा 82 है। तो गुप्ता एरा 82 मतलब 402-403 एडी का है। तो इसमें क्या है कि जो उसका नाम है शब संधि विग्रहिका का, वो बोलता है कि वो चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त के साथ जो विश्व विजयी है उसमें उनका साथी है। फिर उसके बाद एक हमको इंस्क्रिप्शन मिली है 413 की। 413 की जो इंस्क्रिप्शन है वो भी विदिशा के अराउंड ही मिली है सांची में, वो है एक अम्रकार दव की। अम्रकार दव अपने आप को कहता है कि मैं पाटलिपुत्र का वासी हूँ और वो चंद्रगुप्त का एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर था। और उसमें फिर मेंशन आ रखा है बैनर्स ऑफ विक्ट्री। तो आप ये कह सकते हो कि 413 के अराउंड इम्पॉर्टेंट मतलब उनको सक्सेस मिल गई थी। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली क्या है कि सक्सेस का एक और हम इसलिए भी देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त सेकेंड ने जो वेस्टर्न क्षत्रप्स के जैसे कॉइन्स थे ना उनको इशू करना शुरू कर दिया था।
अच्छा,
उनकी सिम एकदम सेम।
तो मतलब वहां से कुछ सीखा उन्होंने।
हाँ, अब अर्ली स्कॉलर्स का मानना था कि पूरा का पूरा पूरा गुजराती जीत लिया था। तो ये जो अमितेश्वर झा और दिलीप राजगौर की जो स्टडी थी, उन्होंने क्या देखा कि जो लास्ट शक रूलर था रुद्रसिंह थर्ड, उसके जो सिक्के हैं ना वो 415 तक इशू हो रहे हैं।
अब तो मतलब तब तक पूर्णतः नहीं हुआ।
तो इसमें आप क्लियरली कह सकते हो। और दूसरा क्या है कि वेस्टर्न क्षत्रप के साथ साथ एक और पावर जो है आपके वेस्टर्न गुजरात में, बेसिकली सदर्न गुजरात का जो रीजन है वहां पे इमर्ज हुई है, जिसका नाम है सर्व भट्टारक। तो दो ये पावर है, ये 415 तक अपने सिक्के जो है इनके इशू हो रहे हैं। और दूसरा क्या है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्के हैं जो कि कॉपी है शकों के सिक्कों की, वो सारे के सारे जो है वो ईस्टर्न गुजरात में ही है।
तो बेसिकली वो उसी एरिया में हुआ होगा।
हाँ, तो जो अब क्या है 1990 में जो ये चीज हुई ना सारी की सारी, तो इससे अब क्या है कि अब पर्सपेक्टिव जो है क्लियर हो गया है कि भाई 415 तक।
बट यार ये बताओ, ये जो इतनी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, क्या ये जो हिस्ट्री बुक्स हैं उसमें इनकॉर्पोरेट हैं या नहीं है?
नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप जैसे जितनी
मैंने एनसीईआरटी सीबीएसई वालों में ये सब डिटेल्स नहीं है क्या, जो लेटेस्ट वाली 1990 वाली और ये सब?
ये तो मेरे को लगता है ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड वैसे ही है। अच्छा। ये शायद से नहीं होगी, और ये तो 100% नहीं होगी कि सबने सबको ये है कि भाई चंद्रगुप्त सेकंड ने कॉन्कर कराया है गुजरात शकों को, ये फुल कॉन्क्वेस्ट कुमारगुप्त के पीरियड में हुई थी, ये कोई नहीं कहता। अब कुमारगुप्त का क्या है कि फाइनली जो है कॉन्क्वेस्ट पूरे गुजरात की कुमारगुप्त के पीरियड में होती है,
उसके बेटे के,
हाँ कुमारगुप्त उसका बेटा है, और जिस तरह उनके पिताजी के टाइम पे सिविल वॉर हुई थी उसमें हमको ये एविडेंस मिलता है कि कुमारगुप्त के पीरियड में भी एक सिविल वॉर हुई थी।
अच्छा।
और कुमारगुप्त जो था बेसिकली कुमारगुप्त की कुमारगुप्त जो ये आपकी देवी चंद्रगुप्त जो देवी थी उनकी और चंद्रगुप्त का बेटा था, फिर एक और इसका भाई था मतलब आप स्टेप ब्रदर ही कह सकते हो, वो जो था उसका नाम था घटोत्कच गुप्त, सॉरी गोविंद गुप्त नाम था।
अच्छा।
गोविंद गुप्त नाम था। हम इसके बारे में इसलिए जानते हैं कि वैशाली जो कि बिहार में है वहां पे हमको एक क्ले सील मिली है जिसमें बता रखा है कि एक महारानी का नाम है जिनका नाम है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी जो कि रानी है चंद्रगुप्त की और जिनका बेटा है महाराज गोविंद गुप्त। अब महाराज गोविंद गुप्त जो टाइटल है उससे ये क्लियर हो रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं के गवर्नर थे, और ये गवर्नर कहाँ के हो सकते हैं, स्कॉलर्स का कहना है कि ये भी मालव विदिशा के अराउंड के थे। क्यों? क्योंकि स्कंदगुप्त के टाइम पे ना हमको एक स्कंदगुप्त मतलब आप हम कुमारगुप्त के बाद चले गए हैं बहुत आगे, हमको एक इंस्क्रिप्शन मिलती है वो गुप्ताओं के गुप्ता से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसमें क्या मेंशन है, उसमें मेंशन है चंद्रगुप्त का, गोविंद गुप्त का, और उसके बाद स्कंदगुप्त की बात हो रही है इनडायरेक्टली। तो मतलब जो कुमारगुप्त ने जो रूल था कुमारगुप्त का उसका आपने नाम ही हटा दिया। तो स्कॉलर्स का ये मानना है कि बेसिकली जो जिसने लिखवाई है इंस्क्रिप्शन उसने जब सिविल वॉर हुई थी ना कुमारगुप्त के टाइम पे तो उस सिविल वॉर में गोविंद गुप्त का साथ दिया था, और जब कुमारगुप्त आए तो भाई इनकी स्कंदगुप्त, फिर जब स्कंदगुप्त आते हैं तो स्कंदगुप्त ने फिर इनको वापस रीइंस्टेट कर लिया था। तो इन्होंने अपनी भड़ास जो है वो कुमारगुप्त का अपनी इंस्क्रिप्शंस में नाम हटा के ही निकाली वैसे करके। तो कुमारगुप्त आप बेसिकली कह सकते हैं कि एक मेन कंसोलिडेट कुमारगुप्त के पीरियड में जो टेरिटरी, क्योंकि आपने गुजरात तो कॉन्कर कर ही लिया है। और इंटरेस्टिंगली क्या है कि अब जैसे प्रभावती गुप्ता जो कि कुमारगुप्त की बहन थी, अच्छा जो प्रभावती गुप्ता है ना उनकी जो माँ है वो देवी नहीं है, देवी जो माँ है वो है कुमारगुप्त की,
कुमारगुप्त
इनकी माँ है, उनका नाम है कुबेर नागा।
तो वो ये चंद्रगुप्त की पहली पत्नी के,
पहली पत्नी दूसरी पत्नी ये तो नहीं पता, लेकिन पत्नी थी और ये नाग प्रिंसेस थी।
अच्छा।
और नाग प्रिंसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको ना कुछ सोर्सेज में मेंशन मिलता है कि जब समुद्रगुप्त ने नाग एरिया जो ये था पूरा का पूरा इस पे कॉन्कर करा था तो उन्होंने उस टाइम नागों की एक जो क्या कहते हैं प्रिंसेस थी उसको वो अपनी कोर्ट में लेके आते हैं और उससे ये शादी करवा देते हैं अपने बेटे चंद्रगुप्त सेकंड की। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो समुद्रगुप्त का ये था कि भाई एक फार रीचिंग उनका ये था कि भाई नागों का जो अलायंस है मालव में ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल को गुजरात में यदि कॉन्क्वर करना हो या वकाटकों में करना हो तो नागों को आपको अलाय करना पड़ेगा, मालव आपका मालवा रीजन जो है वो बेस बनेगा, वहाँ पे नाग हैं तो नागों का अलायंस तो चाहिए। अच्छा जब प्रभावती गुप्ता की बात आती है ना तो प्रभावती गुप्ता की जब आप देखते हैं तो रुद्रसेन से शादी हुई थी इनकी। अब रुद्रसेन ज्यादा समय तक जीते नहीं है, मर जाते हैं जल्दी,
तो वो रानी बनती हैं,
रिजेंट बनती हैं, उनके तीन बेटे और एक बेटी तो थी,
रानी तो थी, सॉरी
हाँ रानी तो थी। अब प्रभावती गुप्ता की दूसरी क्या बात है ना कि आप इन्फ्लुएंस देख सकते हो कि गुप्ता इन्फ्लुएंस कितना है। पहली बात तो जब ये रुद्रसेन सेकंड जो वकाटा का रूलर है जब ये मरता है तो वकाटकों की बेसिकली ना ये
इफेक्टिवली वो रीजन भी आप कह सकते हो कि वो गुप्ता एम्पायर टाइप का ही,
हाँ और वो इसलिए है ना क्योंकि वकाटक बेसिकली साउथ ऑफ नर्मदा है रीजन, और वकाटकों की दो ब्रांच है, एक है नंदीवर्धन ब्रांच और एक है वात्सगुल्म ब्रांच, ये दो सिटीज थी कैपिटल्स थी। तो जो नंदीवर्धन ब्रांच है वो मेन ब्रांच थी और वकाटक जो प्रभावती गुप्ता है उनकी शादी ये नंदीवर्धन ब्रांच में हुई थी। अब जब रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु होती है ना अब कोई नॉर्मल रानी होती तो भाई सीधे जो वत्सगुल्म वाले हैं वो कॉन्कर कर लेते कि भाई राजा मर रखा है सबसे, लेकिन क्योंकि उनके पास जो गुप्त साम्राज्य की बैकिंग है तो ये नहीं करते। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गुप्ता इन्फ्लुएंस है, आप ऐसे देख सकते हो कि जो वकाटक है अपने आप को शैव बोलते हैं, लेकिन जो रुद्रसेन सेकंड है प्रभावती गुप्ता के पति, वो अपने आप को वैष्णव या विष्णु के भक्त कहते हैं,
क्योंकि वो
गुप्ता जो थे वो अपने आप को परम भागवत वैष्णव कहते थे। और दूसरा क्या है कि प्रभावती गुप्ता की आप इंस्क्रिप्शंस पढ़ोगे ना तो ऐसे लगता है कि गुप्त इंस्क्रिप्शन है, क्यों है, प्रभावती गुप्ता वकाटक की क्वीन है, रेजेंट है, लेकिन जो पहले की 7 लाइन है उसमें वो जीनियोलॉजी बता रही है गुप्त साम्राज्य। और दूसरी उससे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, अपने पति के लिए वो टाइटल इस्तेमाल करती है महाराज, अपने पिताजी चंद्रगुप्त सेकंड के लिए इस्तेमाल करती है महाराजा धीराज। तो उस सेंस में आप देख सकते हो कि
इंटरेस्टिंग।
अब होता क्या है कि जो पहला बेटा है उसका नाम था दिवाकर सेन, उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा बेटा जो है प्रभावती गुप्ता की जो डेथ है, मतलब वो 12-13 साल के करीब रेजेंसी में रहती हैं, उसके बाद जो पहले बेटे की तो मृत्यु हो चुकी थी। दूसरा बेटा दामोदर सेन कुछ साल के लिए राजा बनता है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। जो तीसरा बेटा है उसका नाम है प्रवर सेन सेकेंड। प्रवर सेन सेकेंड क्या है कि उसको पता था कि भाई हम मेरे ननिहाल का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है, तो वो सबसे पहला डिसीजन क्या लेता है कि वो नंदीवर्धन, क्योंकि गुप्त टेरिटरी के पास है तो नंदीवर्धन से साउथ अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है प्रवरपुरा। और 443 एडी में जो प्रभावती गुप्ता हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब 443 जो एडी है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ना कि इस पीरियड में जो गुप्त साम्राज्य है, कुमार गुप्त का जो रूल है वो एंड की तरफ जा रहा है, और सबको पता है कि भाई सिविल वॉर होने वाली है। एक सिविल वॉर होगी और सिविल वॉर के बेसिकली आप कह सकते हो 3 कंटेंडर हैं। एक है पुरुगुप्त, पुरुगुप्त बेसिकली कुमार गुप्त का बेटा था और कुमार और अभी छोटा होता उम्र में, तो एक कोई रियल कंटेंडर नहीं है। मेन फाइट 2 बंदों के बीच में, एक है घटोत्कच गुप्त और एक है स्कंद गुप्त। घटोत्कच गुप्त आप एक तरह से कह सकते हो भाई है, स्टेप ब्रदर है कुमार गुप्त का, लेकिन दोनों में एज रिलेशन बहुत ज़्यादा है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि प्रभावती गुप्ता वकाटक का क्वीन जो है और जो गुप्ता प्रिंसेस भी हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी जिसका नाम है अति भावती, उसकी शादी करा रखी है घटोत्कच गुप्त से,
तो वो एक नेचुरली उनको सपोर्ट मिल गया।
लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग ये आती है कि प्रभावती गुप्ता जो कि गुप्ता प्रिंसेस हैं वो ये शादी करवा रही हैं एक अपने गुप्त, तो मतलब मामा से शादी करवा रही है अपनी, ठीक है। तो और ये मालवा विदिशा का रीजन जो है ये घटोत्कच के अंडर है। तो घटोत्कच का पलड़ा भारी लग रहा है कि भाई वकाटकों की बैकिंग है उनको। और स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त की जहाँ जितनी भी आप इंस्क्रिप्शंस देखोगे ना उसमें क्या है कि वो अपनी माँ का नाम नहीं लेते कभी भी।
अच्छा।
उन और उससे हिस्टोरियंस का ये मानना है ना कि जो उनकी माँ थी स्कंदगुप्त की ना, या तो वो माइनर प्रिंसेस थी, माइनर क्वीन थी कुमार गुप्त की, या तो क्वीन ही नहीं थी।
अच्छा।
हाँ, लेकिन ये जो एक क्रेडिबल वो ना होने के कारण भी मिलिट्री जनरल बहुत अच्छे थे स्कंदगुप्त, क्योंकि अपनी इंस्क्रिप्शन में वो कहते हैं कि भाई जब कुमारगुप्त जिंदा थे ना उस टाइम पे एक पावर थी पुष्यमित्र करके, पुष्यमित्र कौन थे हम नहीं जानते, लेकिन बहुत बड़ा थ्रेट था गुप्त एम्पायर का, उनको उन्होंने स्कंदगुप्त ने हराया। तो 445 के अराउंड जो है लड़ाई शुरू होने लग जाती है। अब कुमारगुप्त की जो मृत्यु है वो होगी 447-448 एडी के अराउंड, लेकिन उससे पहले ही लड़ाई जो है शुरू हो जाती है। और हम कैसे कह सकते हैं लड़ाई शुरू हो रही है, एक इंस्क्रिप्शन मिली है हमको प्रवरसेन सेकंड की, और प्रवरसेन सेकंड जो है वो है त्रिपुरी में मिलिट्री कैंप में अपने। त्रिपुरी का जो रीजन है बेसिकली आज का मॉडर्न तेवर जबलपुर के पास है, जबलपुर आता है आपका नर्मदा के नॉर्थ में गुप्ता टेरिटरी में। तो बेसिकली एक वकाटक आर्मी जो है वो आ गई है गुप्ता टेरिटरी में, बेस बना रखा है उसने, तो जाहिर सी बात है कि भाई घटोत्कच का सपोर्ट करने के लिए आई होगी। ले अब हमको कहीं पे मेंशन नहीं आ रखा कि भाई कि रिजल्ट क्या था, कि मतलब रिजल्ट तो पता है हमको कि लड़ाई कैसे चली ये नहीं जानते हम, लेकिन इतना पता है कि जब आप स्कंदगुप्त के सिक्के देखोगे ना, तो स्कंदगुप्त के जो सिक्के हैं वो स्टार्टिंग उनकी इशू डेट है वो है 454-445 AD, और कुमारगुप्त के आखिरी सिक्के हैं 447-448। तो ये 7-8 साल का पीरियड है, इसमें कोई गुप्ता रूलर सिक्के अपने इशू नहीं करवा रहा, तो बेसिकली 7-8 साल तक ये सिविल वॉर चलती है। और फाइनली जो है वो
स्कंदगुप्त
रूलर बनते हैं 444-445 AD में। अब इंटरेस्टिंगली एक और बात क्या है ना, ये जो प्रवरसेन सेकंड है ना, ये अपनी एक इंस्क्रिप्शन में लिखता है ना कि उसने अपनी जो बहन थी उसको वापस लेके आया था। बहन कौन? जो घटोत्कच की अतिभावती को वो वापस लेके आया अपने टेरिटरी में। और वो वापस इसलिए लेके आया क्योंकि स्कंदगुप्त का भी फोकस जो है वो है नॉर्थ वेस्ट पे। क्यों? क्योंकि जो हंस हैं
वो
आने लग रहे हैं यहाँ पे।
तो अगले में हम उन पे बात करेंगे जो इन्वेजन होता है। तो ये हमने सारी बातें कर ली, पूरा जीनियोलॉजी बैकग्राउंड, एक्सपेंशन, कहाँ लड़ाइयाँ हुई, क्या है। अब ये बताइए कि ये जो गोल्डन पीरियड बोला जाता है, ये क्या, इसका क्या कारण है?
गोल्डन पीरियड, क्लासिकल पीरियड, ये जो है दो टर्म्स इस्तेमाल करे गए हैं। और बेसिकली जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे जैसे RC मजूमदार, RD बैनर्जी, ये इन सब ने यूज करा गया है, RG भंडारकर। लेकिन इंटरेस्टिंगली पता क्या है कि हमारे पास ऐसा, जब हम पढ़ते हैं ऐसा, तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे जो आपके नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे ना, वो गुप्ता एम्पायर को प्रेज ही करते थे। KP जायसवाल को आप पढ़ेंगे तो KP जायसवाल अपनी हिंदू पॉलिटी में लिखते हैं कि वो, बल्कि वो कहते हैं कि हाँ भाई, इन्होंने आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छा काम करा, लेकिन उनके उनके हिसाब से जो रिपब्लिकन पावर्स थी जैसे योधे, मालव, इन सबको इन्होंने हरा दिया, तो वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो बेसिकली नेशनलिस्टिक व्यू एक ये था कि एक
यूनिफाइंग तो बना, लेकिन
यूनिफाइंग बना, आर्ट कल्चर इस समय पीक पे रहा, और एक आप कह सकते हैं कि जो जितने भी संस्कृत ड्रामास के, उसमें जितने भी आपके लिटरेचर या आर्किटेक्चर के, उसमें एक रिफाइनमेंट जो इस पीरियड में आई ना, वो बहुत यूनिक थी। RC मजूमदार के हिसाब से जो एक रिफाइनमेंट इस पीरियड में आई थी, वैसी रिफाइनमेंट अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। अच्छा। RC मजूमदार ऐसा लिखते हैं, वो क्लासिकल पीरियड इसको कहते हैं। और फिर उसके बाद के स्कॉलर्स जैसे कि रोमिला थापर के, वो क्लासिकल पीरियड का जो ये पूरा वो है ना, उसको अपोज करती है। उनका ये कहना है कि इस पीरियड को आप क्लासिकल ना कह के थ्रेशहोल्ड टाइम्स करके टर्म यूज करी गई है। थ्रेशहोल्ड टाइम्स में बेसिकली आप ये, उनका कहना है कि जो एक स्टैंडर्ड सेट होता है ना चीज़ों का, कि हिंदुइज्म या क्या है, जैसे महाभारत और रामायण के जो फाइनल वर्जन्स हैं, कंपाइल पूरे फाइनल फॉर्म में इस पीरियड में आए, तो एक स्टैंडर्ड सेट इस पीरियड में हुआ था, ये कोई क्लासिकल पीरियड एज सच नहीं था। फिर आप ये DN झा मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं और स्कॉलर हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो वो तो पूरा ही पूरा अपोज करते हैं। उनके हिसाब से कुछ नहीं था, अब एक स्मॉल सेक्शन था सोसाइटी का, उस उनका गोल्डन पीरियड रहा होगा तो रहा होगा,
कि मतलब ब्राह्मणों का या,
हाँ, ब्राह्मण या एलीट्स का था, और जो नॉर्मल लोग थे उनकी तो हालत खराब ही थी,
उनका तो यही रहता है ना।
लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है भाई, एंशंट पीरियड, एंशंट टाइम्स में आप किसी भी सिविलाइजेशन में चले जाओ, कौन सा ऐसी सिविलाइजेशन है जहाँ पे,
हाँ, exactly.
और अभी भी,
हाँ, अभी भी
कोई ऐसा तो, कोई भी कोई यूटोपियन स्टेट तो है नहीं कि भाई सारे के सारे लोग मजे में ही जी,
हाँ, जिनमें एलीट्स का बुरा टाइम और हम लोगों का बहुत अच्छा टाइम, ये कौन सा टाइम हुआ है?
तो एक ये एलिगेशन मिलता है। तो जो क्लासिकल पीरियड या गोल्डन पीरियड की जो टर्मिनोलॉजी है, उसका परसेप्शन जो है वो थ्रू आउट चेंज होता गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट।
चलो जय भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर से हम अपना जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें हम हर्न इन्वेजन की बात करेंगे, और अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में फिर से बता दो, हिंदी वाला जो क्या नाम है उसका?
द स्टोरी ऑफ इंडिया नाम है, और उसमें बेसिकली जैसे आपके पॉडकास्ट पर जब आया था पहली बार, तो बहुत लोग वहाँ से फिर मेन चैनल पे आए थे इंग्लिश वाले।
इस बार हम उसको टैग कर देंगे, ठीक है,
तो मेन चैनल पे आए थे तो उनका एक वो कमेंट था कि भाई
हिंदी में होना चाहिए,
हिंदी में होना चाहिए,
और आपने भी प्योरली हिंदी में है, और
आपने भी सजेस्ट करा कि एक हिंदी चैनल
हिंदी में बनाओ कंटेंट,
नहीं नहीं तो उस पर कुछ काम
चल। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच,
ठीक है,
वापस मिलेंगे जल्दी शीघ्र, नमस्ते।